Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna. तो आज आप लोग जो श्री राधा माधव के भक्त समूह की चित्रकूट धाम यात्रा का द्वितीय और अंतिम दिवस है, कल हम लोग चित्रकूट धाम के बारे में कुछ आलोचना किए थे और भगवान के निवास स्थल प्रमोद वन श्री कामदनाथ गिरी का बारे में चर्चा किए थे, उसका परिक्रमा भी किए थे। आज भी आप परिक्रमा करते समय देखे होंगे, इतने गर्मी में ही लोग रात में बैठे हुए थे, कभी दंडवती करते हैं, कभी अंधार में बैठे भजन करते हैं। आज भी महात्मा गण जिनका मन प्राण राम में लगा है, वो सब छोड़ करके वही कामदगिरी के चरण में बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम सीता राम करते करते ऐसे अनेक प्रमाण है भाई, ऐसे महात्माओं को साक्षात श्री सीताराम के दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि कामना पूर्ण करने वाली है वो नित्य निवास। बड़े बड़े आचार्य जी लोग कहते हैं कि ये कामदगिरी भगवान के नित्य निवास स्थल है, हमेशा रहते हैं सीताराम, हाँ हमेशा रहते हैं, तो इसलिए उनको शरण लेकर के भजन करके भगवान के आज भी महात्मा उनके दर्शन प्राप्त करते हैं, तो ऐसे स्थल है। तो कल भी आप लोग उनके परिक्रमा किए, तो आज इसी चित्रकूट जो हमें बताया था कि 84 क्रोश की पवित्र स्थान है, तो थोड़े दूर दूर जगह आप गए आज, जैसे एक गुप्त गोदावरी सुबह गए थे, ऐसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल तो नासिक है। नासिक में जो पर्वत है उसका नाम है, किसकी याद है, पूरा महाराष्ट्र लेकर के केरल तक वो पर्वत गया है, नहीं विंध्याचल तो यूपी में है, हाँ किसका ज्योग्राफिकल नॉलेज ज्यादा है, सह्य पर्वतमाला, सह्याद्री नाम सुने, हिमाद्री सह्याद्री, जैसे हिमाचल है ऐसे सह्याचल है, सह्याद्री स्टार्ट हुआ महाराष्ट्र नासिक से लेकर केरला पर्यंत गया है, सह्य पर्वतमाला। आप लोग से इतने जनरल नॉलेज कॉमन है ना, नहीं हाँ ये सब इंटरव्यू में आता है एक उसमें सह्याद्री का। तो सह्याद्री के शुरुआत में गौतमी सुता गौतम ऋषि के पुत्री के रूप में गोदावरी प्रकट हुई थी, गोदावरी में वहाँ तो बड़ा हिस्ट्री है, आप कभी नासिक जाएंगे कभी टूर लेकर के, वहाँ भी दो तीन दिन की यात्रा अच्छा है, पूरा सह्याद्री पहाड़ में जहाँ से गोदावरी प्रकट, बड़े अच्छा लीला है, बड़े सुंदर कथा है। त्र्यंबकेश्वर महादेव में भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे, वहाँ सह्याद्री दर्शन किए, त्र्यंबकेश्वर दर्शन किए थे, वहाँ राम घाट है गोदावरी, पंचवटी तो वहीं है, अब जो होटल में रुके तो नाम भर है, असली पंचवटी पाँच वटवृक्ष वो 20 लाख साल पुराना, वो अभी भी दंडायमान है, वही पाँच जिनके किनारे जिनके नीचे सीता जी को हरण हुआ था रावण ने, जो उस लक्ष्मण ने अग्नि रेखा, ये सब स्थान है अभी भी, हाँ पंचवटी राम घाट जहाँ पे भगवान ने अपने पिताजी के पिंडदान किए थे, यहाँ भी एक स्थान ने पिंडदान किए थे, वहाँ भी किए थे, ये सब स्थान है। तो असली पंचवटी तो वही है, पंचवट के अभी भी है। तो गोदावरी शुरू से सीता माता की सहेली थी, कौन थी, कैसी सहेली हो गई भाई, ओ कहाँ महाराष्ट्र नासिक हो रहे मिथिलावासी, कैसे फ्रेंडशिप हो गया था, ऐसे होता तब जमाना तो फोन ईमेल व्हाट्सएप था नहीं, फेसबुक भी था नहीं, हाउ कैन दे बिकम फ्रेंड, क्योंकि गौतम ऋषि की असली तपस्थली था, जानते कहाँ पे? पता नहीं, उनका कुटिया बिहार में था, बिहार में मिथिला के बॉर्डर में बक्सार से आगे वहाँ था। तो वहीं पर गौत अहल्या अवधार भगवान ने किए थे। गौतम ऋषि के पुत्र, अहल्या के जो पुत्र थे उनका नाम था, जो कि जनक महाराज के पुरोहित थे, वो अहल्या के पुत्र थे, सरद्वान ऋषि। उन्होंने तो गौतम ऋषि उनके पुरोहित थे जनक महाराज के, तो उनके बेटा भी उनका पुरोहित हुआ। तो इसके नाते जब सीता जी के जन्म होता है तभी से उनके साथ संपर्क थी। तो आज गौतम ऋषि जब वहाँ गए तप करने के लिए तो वहाँ प्रकटित, तो जब उनको पता चला कि देवताओं के द्वारा कि सीताराम वनवास में आएंगे, इधर आ करके इसमें वनवास करेंगे, इस अरण्य में, चित्रकूट अरण्य में, तो उन्होंने व्याकुल होकर के, अब पिताजी को पूछने से पिताजी मना करेंगे, इतने दूर नहीं है, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मत जाओ अभी। तो गुप्त रूप में, बिना किसी को बताए गुप्त रूप में आई उनकी सेवा करने के लिए, अपनी सहेली है उनके साथ में। इसलिए यहाँ गोदावरी गुप्त रूप में है, गुप्त गोदावरी, छिप करके अंदर है, बाहर नहीं प्रकट होती। और उनके मन जान करके विश्वकर्मा ने, देवताओं के जो आर्किटेक्ट है, उन्होंने गुफा बनाया डबल स्टोरी, ऊपर गए ना, ऊपर एक नीचे टू स्टोरी नेचुरल। अब उसमें ऐसी जरूरत है, कितने कूलिंग था नहीं, ऐसे पानी है ये, और ऊपर में ये पूरा इतने थर्माकोल भी काम नहीं करे, इतने फर्स्ट क्लास हीट प्रूफ अरेंजमेंट है, सुपर, कोई साइक्लोन, वेदर, बारिश, ठंडी, गर्मी, नथिंग, फर्स्ट क्लास, नो डिस्टर्बेंस। और छोटा सा कब बाहर आओ, खा पी कर जाओ, फिर उसका अंदर घुस जाओ। तो इस प्रकार के व्यवस्था किए थे। लेकिन कभी कभी भगवान जाते होंगे, सीता जी कभी जाकर स्नान करती हुई, कभी बैठते कराते होंगे, लेकिन उनका नित्य निवास स्थल तो यहीं था, कभी कभी यहाँ जाते थे। तो गुप्त गोदावरी, गोदावरी मैया इस प्रकार गुप्त रूप में वहाँ प्रकट हुई थी भगवान की सेवा के लिए। उसके बाद हम लोग जब आप वहाँ गए होंगे और उतर के आए होंगे, देखे होंगे चारों तरफ, अभी भी आपको लगता था कि निपट शेड्यूल ट्राइब एरिया है ना, छोटे छोटे झोंपड़ी, कोई पढ़े लिखे स्कूल, कॉलेज, रोड भी इतना ठीक नहीं है, घर बाड़ी सब इसी प्रकार के, अति बैकवर्ड है ना, नहीं गाँव बैकवर्ड जैसा लग रहा था। तब थोड़ा अनुमान कीजिए, आज हम 2017 में ऐसा देख रहे हैं, भगवान राम जब वनवास में आए थे लगभग 20.5 लाख पहले, अंदाज लगाए क्या उसका स्थिति होगा, कितने रमणीय होगा, कितने पर्वतमाला, अनेक पर्वत दिखाई पड़ता ना चारों तरफ, पहाड़ी पहाड़ है। अब थोड़े बहुत पेड़ फूट दिखाई पड़ता था, काट कूट से खत्म कर दिए, लेकिन तभी जमाने में जब लोग इधर रहते ही नहीं थे, यहाँ लोग जमुना के बाद में जन रोड नहीं था, कोई लोग आवागमन नहीं था, भीषण जंगल था, केवल बड़े बड़े राक्षस, असुर, वन्य जंतु और कोई घोर बड़े बड़े तपस्वी जो हुए नीना इस जगह में रहे, इस प्रकार ये सब वनवासी बनचा रहे, नहीं तो इस प्रकार कितने सुंदर नेचुरल एटमोस्फेयर होगा। उस समय में भगवान यहाँ रहते होंगे, वैसे घूमते थे। तो इस प्रकार आज भी उसको देखने से भले सूख गया है, टूट गया, उजड़ गया, लेकिन फिर भी स्थान तो हुई है ना, वही स्थान है। इसी स्थान में भगवान अपने स्वपद में बिना चप्पल पहने रमण कर रहे थे, हम तो बस में घूम रहे थे, वो तो पैदल में घूम रहे थे, है ना, बस में घूमे पैक्ड प्रसाद जाकर अंदी स्पॉट सर्व हो, ऐसे हम चाहते हैं। बंदर के लिए चार दरवाजे खड़े रहने थे बंदर, लेकिन वो तो उन्हीं के साथ रहते थे। क्योंकि ये भगवान राम की तपोभूमि, ये उनके लीला भूमि है। तो इस प्रकार से उन्होंने आ करके इस एरिया में प्राय अनेक तपस्वी मुनि ऋषि रहते थे, और जो भगवान राम के प्रिय थे, भगवान राम को देखते सब चाहते थे कि हमारे कुटिया को थोड़ा पवित्र की, जैसे किसी का गांव में कोई जाए तो बुलाते हैं सब गृहस्थ लोग, हमारे घर में आ जाए ना, आज आज हमारे घर में प्रसाद लीजिए, आज हमारे घर में प्रसाद लीजिए, सब बुलाएंगे। तो जब भगवान साक्षात है कौन नहीं बुलाएगा, भगवान फिर वनवासी रूप में है, मुनि रूप में है, तो सभी बुलाना चाहते थे ऋषि मुनि तपस्वी। तो यहाँ हम जो बाद में गए थे अत्रि ऋषि का आश्रम, अत्रि ब्रह्मपुत्र हैं, जो आज भी आकाश में कभी कभी देखते हैं एक मंडल दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि मंडल, करेक्ट। अब आप बोलो सप्तऋषियों का नाम, बताया था ना आपको, कितना याद है बोलो, फेल, एक ही बता पाया, दूसरा फेल, कौन बता सकता है सप्तऋषियों का नाम, हाथ उठाओ, कौन बता सकता है, साथ बोल सकता है, हाथ में कॉपी पेन तो नहीं रखा ना, बोलो, और एक बार, साथ हुआ, साथ हुआ, हाँ हुआ साथ, ऐसे शुरू से पुलहा पुलस्त, इससे श्रील करना चाहिए, सबसे पहले पुला पुलस्त वशिष्ठ अत्रि अंगिरा मरीचि क्रतु, ऐसे सप्त ऋषि। तो इन ब्रह्मपुत्र के पुत्र जो हैं ब्रह्मा जी के साथ ऋषि, जो इस जो हमारा भुवन मंडल है, वो अभी जो सरकार गवर्नमेंट है उसमें ये सप्त ऋषि हैं। आप जानते हैं जैसे हमारा भारत सरकार के जो संगठन है संविधान के अनुसार, सेंटर में केंद्र में जो शासन होता है तो उसमें पार्लियामेंट होता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा होता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री होते हैं, फिर उनके प्रभी उनके नज़दीक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर बाकी सब मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, फिर ठीक इसी प्रकार ये शासन के मेन जो एक्टिव मंडली होता है। तो इस प्रकार एक मनु जो मनुष्यों के अधिकृत अधिपति हैं, जो मनु शासन करते हैं ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड को शासन करने वाला राजा मनु होते हैं, तो मनु के मंत्रिमंडल में ये सब सदस्य है। मनु के मंत्रिमंडल में एक तो मनु होना ही मस्ट, मनु के साथ एक भगवत अवतार होना मस्ट, मन्वंतर अवतार कहते हैं, कंपलसरी होना ही पड़ेगा। एक भगवान अपने पोजिशन लेकर एक्सटेंशन काउंटर खोलेंगे, एक भगवत अवतार रहेंगे, एक मनु पुत्र होना मस्ट, एक मनु के पुत्र होगा, एक इंद्र होगा, और एक सप्त ऋषि होंगे, सात ऋषि होंगे जो उनके मंत्रिमंडल में भाग लेंगे। तो बस इस प्रकार के उनके मंत्रिमंडल होता है। तो इस बार जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य में ये सात ऋषि हैं, सप्त ऋषि, तो ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सप्त ऋषि कर्म हैं, तो उनमें से एक ऋषि के नाम है अत्रि ऋषि, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, ब्रह्मा जी प्रजापति हैं, उन सबकी प्रजा उत्पन्न के कर्म ड्यूटी दिए थे ब्रह्मा जी ने। तो अत्रि ऋषि ने आ करके यहाँ उनका तपस्या किए थे, अभी शादी नहीं किए थे, ब्रह्मचर्य थे, तो वो आकर यहाँ तप कर रहे थे, बड़े भारी तप कर रहे थे। बाद में उनका शादी होता है, किसका सा शादी होता है, अनुसुया कौन है, कर्दम ऋषि कौन है, अरे वो भी अत्रि ऋषि के भाई हैं, वो भी यस वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र। तब जमाने तो मिलते नहीं थे लड़कियों, क्या करेंगे, अपने भाई के लड़के की शादी करना पड़ता, ये सृष्टि की शुरुआत में हुआ है। तो कर्दम ऋषि जो उनके भाई थे, वो पोस्ट में मिनिस्टर में बैठे थे सप्त ऋषि में, लेकिन मेरे समझते कि ब्रह्मा जी को इतने लड़के थे, कर्दम ही उनके पुत्र थे, वो तपस्या करने गए थे, 10,000 साल सरस्वती नदी के किनारे तप किए थे कर्दम ऋषि। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, उनके तपस्या को देख करके भगवान साक्षात नारायण जाकर रो पड़े, इसलिए यहाँ बिंदु सरोवर नाम सुने, बिंदु सरोवर के बिंदु सरोवर वही है अहमदाबाद से 60-70 किलोमीटर दूरी पर सत्यजुग का तीर्थ है, सरस्वती नदी के किनारे कर्दम ऋषि का तप क्षेत्र, जहाँ पर भगवान के आंख से एक बिंदु टपक करके वो सरोवर बना था, बिंदु सरोवर, जिस सरोवर में अनुसुईया माता ना देवहूति माता प्रवेश करेगी तो कमाल हो जाएगी। आप तृतीय स्कंद भागवत में पढ़ेंगे, जस्ट उसी के अंदर एक डुबकी लगाया तो दुनिया हो गया, है ना, नहीं पढ़े ना, वही बिंदु सब वही पानी में डुबकी लगाते ही सब ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बिंदु भगवान का आंसू, ऐसे कहते हैं कि भगवान आए, उनके इतने कठोर तपस्या देख करके भगवान आए, बोले बेटा किस लिए तपस्या कर रहा हूँ, बताओ क्या करूँ तेरे लिए, मैंने इतने घोर तप कर रहा हूँ। तो कर्दम ने हाथ जोड़े, प्रभु आप जो आए हैं मेरे तपस्या के एक ही एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है, क्या है ना, मेरे लिए एक सुटेबल मैच डिसाइड कर लीजिए, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक अच्छा लड़की ढूंढ दीजिए। आप कभी सुने इसे कोई तपस्या अब तक किए, भागवत में है वर्णन, लोग इसके लिए 10,000 साल तक तब किए थे और ये मांगे भगवान से कि मेरे लिए ढूंढ दीजिए कैंडिडेट। भगवान रो पड़े, बोले वाह मैं तपस्वी तो बहुत दिखाऊं तो ऐसा तपस्या इसलिए तो इसलिए आंसू टपक करके बिंदु विरा बिंदु सरोवर भाता, मानो कोई बात नहीं थे, रेलवे डिसाइड करके रखा हूं मैंने। तो देवहूति माता जो स्वयंभू मनु के पुत्री है, तो उनको स्वयंभू मनु के 3 बेटी थे, किस भी याद है नाम, आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो इनमें से छोटी थी देवहूति, तो देवहूति माता कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। देखिए वो उनके पिताजी थे कौन, देवहूति के सम्राट, पूरे ब्रह्मांड के अखंड मंडल के पति, ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र, होल ब्रह्मांड के सम्राट थे, इंचार्ज स्वयंभू मनु प्रथम मनु थे। उनके छोटी बेटी थी लाडली, उनके लिए उन्होंने ज्वाइन ढूंढ रहे थे, और देवहूति देखने में कैसी थी, रूप गुण बोले थे, इसलिए उन्होंने ऐसे वर्णन आता है भागवत में। एक बार देवहूति माता अपने कोठी के ऊपर, अपने जो महल था महल के ऊपर खेल रही थी, छत के ऊपर खेल रही थी, बाहर नहीं जाती थी। तभी जमाने में सब लड़के होते थे ऐश्वर्यंग पश्या, क्या होते थे, सूर्य किरण भी शरीर में नहीं पड़ सकता, सूर्य भी नहीं देख सकता है, इसलिए उनका नाम होता ऐश्वर्यंग पश्या। हमेशा घर में रहते थे, घर के अंदर उनका जो पढ़ाई लिखाई, टीचर आकर घर में पढ़ा कर जाते थे, आवश्यक टीचर, पुरुष देखते ही नहीं थे उन्होंने, सब उनके लेडीज सिक्योरिटी, लेडीज टीचर, एवरीथिंग इन साइड इन हाउस, सब लेडीज सब करते थे। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पुरुष दर्शन भी नहीं करते थे, वो लोग सूर्य किरण भी नहीं देख पाते थे, इस प्रकार से नियम होता करता था। तो देवहूति माता इसलिए अपने कोठी के ऊपर खेलती थी, अपने पैलेस था, पैलेस के ऊपर छात के ऊपर खेल रही थी। ऊपर में गंधर्वराज चित्रसेन जा रहे थे, गंधर्वों के राजा, गंधर्व जानते किसको कहते हैं, जो देवताओं के सिंगर होते हैं और जो इतने हैंडसम होते हैं, इतने आकर्षक मनुष्य, तो थर्ड क्लास कीड़े कचड़े था देवताओं देखते मनुष्य है, हम भले कितने सेंट पेंट ड्रेसिंग करके जाए वो थूक फेंकेंगे कीड़ा की तरह, इतने मतलब क्या दुर्गंध है, मनुष्य लोग मर रहे हैं अभी तो ऐसे ही देखते हैं। लेकिन वो जो गंधर्व गण देव देव वो देवकोटि में आते हैं, देव शरीर है वो, देव शरीर में गंधर्वों के राजा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चित्रसेन, वो अपने प्राइवेट प्लेन में अपने जाते थे, उनको इसे हवा भर करके ट्रैफिक लाइट फॉलो नहीं करना होता था, वो अपने प्राइवेट रूट में जाते थे। वो जाते जाते देवहूति माता, क्योंकि इतने बड़े महल था उनके पिताजी के, इतने महल था कि बोला वो एरोप्लेन का रूट को भी कवर करता था। वो अपने फ्लाइट में जाते थे, देखे क्यों खिल, उनकी नज़र पड़ा तो एक बार दृष्टि पड़ते ही चित्रसेन गंधर्व अपने प्लेन से सेंसेस होकर गिर पड़े थे, हाँ फेंट हो गए, गिर पड़े जस्ट एट ए ग्लांस। तो इससे अंदाज लगाया कि कितने रूप खूबसूरत रूप होगा देवहूति माता के, ये वर्णन दिया। तो वो देवहूति के लिए उनने माता पिता मनु और शतरूपा, माता पिता उनके लिए बिफिटिंग हस्बैंड ढूंढ रहे हैं, कोई IIT ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर और बिजनेसमैन ढूंढे नहीं, किसको ढूंढे, एक संकीर्ण जंगल, निर्जन जंगल में 10,000 साल से तप कर रहा है, सेविंग भी नहीं किया है। 10,000 तक तो बाल तो सेविंग नहीं किया है। आप अगर 10 दिन तक सेविंग नहीं करते, बोले क्या हो गया, कुछ पसंद ही नहीं करेंगे, फोटो नहीं खींचेंगे। लेकिन फॉर 10,000 ईयर्स सर्प नहीं था, साबुन नहीं था, कंघी नहीं था, कुछ प्रसाधन नहीं था, जंगल के अंदर रहते थे फॉर 10,000 ईयर्स। वो मोबाइल फोन तो था ही नहीं, तो किस प्रकार उनका रूप रंग हुआ होगा, जस्ट इमेजिन, है ना। आपको अगर 2-4 साल जंगल में रहना पड़े तो बोलेंगे भूत बन जाएंगे हम। तो 10,000 साल के बाद में कभी ढंग से नहाए थे, ना सेविंग किए थे, ना कुछ कपड़ा लत्ता पहने थे, वैसे कोपिन धारण करके पूरा शरीर उनका शीर्ण का पूरा अस्थि कंकाल, क्योंकि ढंग से खाते नहीं थे, हमेशा वजन करते थे, कभी थोड़ा जलाहार फलाहार कर दिए, इतने कठोर तप कर रहे थे। ऐसे तपस्वी अवस्था में उनको शंभु शत्रुपा पता लगा लगा ढूंढते ढूंढते वहां से पिता राजा और रानी स्वयं बेटी को साथ में लेकर के, मंत्रिमंडल को साथ में लेकर पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर आए, आकर के उनको रिक्वेस्ट करके बोले आप स्वीकार कीजिए। ना तो देवहूति उनका फोटो देखी थी, ना फोन में बातचीत की थी, ना फ्रेंड बनाई थी, ना वो किए थे, ना कुछ किए थे। ये देखिए आइडियल मैरिज किसको कहते हैं, ये मनुष्यों के परम पिता स्वयं वो मनु ये आदर्श सृष्टि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो होता है कैरेक्टर, चरित्र। आजकल चरित्र बता को तो कोई ध्यान ही नहीं देते, कोई कदर नहीं, कोई कसर नहीं उसका। पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे एक प्रोवर्ब याद आया है, आप सबको पता भी होगा, इफ हेल्थ इज लास्ट देन नथिंग इज लास्ट, इफ इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ वेल्थ इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट, पढ़े थे ना। लेकिन आजकल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ये प्रोवर्ब क्या हो गया, इफ वेल्थ इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, इफ कैरेक्टर इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, इफ वेल्थ इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। तो यही हम लोग का आजकल के जो निर्णय है, कोई संबंध करना चाहते हैं, बेटी बेटा का विवाह करना चाहते हैं, सबसे पहले धन की ओर नजर पड़ेगा, है ना। नहीं मालूम स्नान कैसे दे देंगे, उनके पास था क्या, कोई बैंक बैलेंस था, अकाउंट भी नहीं खोले थे, कपड़ा भी नहीं था पहनने के लिए, कंघी करने के लिए कंघी भी नहीं था, ना रिजर्व था। 10,000 तक खड़े तपस्या कर रहे थे, और मनु महाराज सम्राट मनुष्यों के अधिनायक ब्रह्मा जी के पुत्र वो आए ढूंढते 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 उनको आकर दे, बहुत ही माता जैसा माँ को देकर गए, ये है आदर्श। हम लोग को अगर शिक्षा लेना चाहिए भागवत में ऐसे ऐसे प्रमुख आता, इसीलिए सब कैरेक्टर ओरिएंटेड होना चाहिए। चरित्र को तक कोई दिखता ही नहीं, किस प्रकार अपना मनुष्यत्व अपने व्यक्तित्व अपने ब्रह्मचर्य नाश करते हैं लड़के लोग सब, किस प्रकार खूनखार बनते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, क्या उनके संस्कार होता है, क्या उनका शिक्षा होता है। यही शिक्षा को पढ़ने के लिए माँ बाप कोचिंग करके पैसा रक्त निकाल कर बोलते हैं हमें यही बनना चाहिए, कैरेक्टरलेस बना के लिए तुले हुए आप लोग माँ बाप, कोई चरित्र को नहीं बनाना चाहते। ना ना ना, भले मैं लोन करके लाऊं वो मर जाए, ये मंदिर जाता है कंठी भी डाल दिया, आजकल प्याज लहसुन में नहीं खाता, माय गॉड हो क्या गया उसको, गड़बड़ है, धोती पहनने लगा, और बाप बेटा तो जो करता है घर में कम से कम धोती कुर्ता मत पहनो, ऐसे कहते हैं। बहुत आकर रिक्वेस्ट करता हम लोग, बोलते देखो उनको ऐसा मत कीजिए, उनका अभी सैंक्शन हो विदेश से आएगा, हम भेजेंगे तो अब मंदिर में ऐसा मत कृपा करके, विदेश भेजेंगे वहाँ जा करके कोई गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड चक्कर पड़ेगा, शराब खाएगा, क्या क्या कदर जे करके मरेगा, उसके लिए लोन करके भेज देंगे खुशी ठीक है, लेकिन मंदिर में आकर के सदाचारी बनेगा, हरिनाम करेगा, हो नहीं। ये है हमारा दशा, ये हमारा चरित्रवत्ता, ये गुणवत्ता है आज का। इस सब के लिए हम ही दायी हैं। हम अगर आपको नहीं सुधारेंगे देश क्या सुधरेगा? हम अगर मानते हैं हम भगवान का है तो हम सभी का उत्तरदायित्व है इसको सुधारना, इसको जानना, ये सब चीज जानना है। क्या चीज इसमें? व्हाट इज देयर? नथिंग। काहे को पागल होकर के इस सब चीज के लिए पीछे पड़े हैं? इस IIT से पढ़ करके क्या बनते हैं? क्या है फ्यूचर उनका? केवल धन उपार्जन करने से सब कुछ हो जाता है क्या? कितने भी धन उपार्जन करे, फाइनल जो गेट है मृत्यु तो है ही है ना। लेकिन मरने से पहले अगर चरित्र नष्ट करके जाते हैं, कौन पूछेगा उनको? कौन पूछेगा उनको? इसलिए नीतिवान लोग कहते हैं, नीतिवान लोग कहते हैं, एक कबीर जी, आप जानते होंगे कबीर जी बहुत बड़े संत हो गए, उन्होंने कहते हैं, कबीरा जब तुम जग में जन्म लियो जग हंसे तुम रोए। क्या बोले? हम सभी कोई हंस करके जन्म लिए थे क्या? हमारा जो ओपनिंग शुरू हुआ था इस प्लैनेट में, कैसे ओपनिंग किए? रो करके ओपनिंग किए थे सब। एवरीबॉडी स्टार्टेड विथ योर लाइफ विथ क्राइंग, रो करके शुरू किए। और क्लोजिंग कैसे करेंगे? रुला करके। अब बीच में बोलते हैं कि हम एंजॉय करेंगे। अरे हुड़बक कहीं के क्या एंजॉय करें? तेरा ओपनिंग क्लोजिंग जब ऐसा है, हाउ कैन यू एंजॉय? मूर्ख है ना। तो बोलते हैं रे कबीरा जब तुम जब जग में जन्म लियो जग हंसे तुम रोए। इसलिए ऐसा करने कर चलो ताकि तुम हंसो जग रोए। तो जीवन में जब तक जियोगे, थोड़ी समय की तो खेल है, देखते देखते ओवर खत्म हो जाएगा। जब तक जियोगे ऐसा कुछ कर जाओ ताकि तुम जाते समय हंस हंस के चले जाओ, तेरे लिए जगत रोते रहे, तभी माना जाएगा दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। उसको ना करके ऐसे करो जिंदे जीते जीव लोग मर जाए वो सही, मरने के बाद कहेंगे जीते समय ऐसे कहें। ये कोई जीवन है, ये कोई मनुष्यता है, कोई व्यक्तित्व है। ये सब वनवासी तपस्वी तप करके कैसे जीवन को कैसे करते थे देखना चाहिए। तपस्या ही जीवन होना चाहिए। सृष्टि की शुरुआत तपस्या से हुआ था। तप ही परम सत्य, तप ही जीवन का लक्ष्य। इसलिए बड़े बड़े भगवत अवतार शब्द भी कहते हैं, पुत्र तप, तपो दिव्यम पुत्र का, रे मेरे पुत्र तपस्या करो। 100 पुत्र थे, किसी एक को ने IIT के लिए नहीं भेजे। नो, नॉट इवन सिंगल वन, मतलब सब बाबा जीवन 100 लड़के को, नॉट नो बड़ी। आज भी हम लोग भारतवासी है, रामायण महाभारत गीता और जितने जितने सब पारंपरिक धर्म ग्रंथ जो सब आदर्श चरित्र के वर्णन है उपनिषद आदि में, कोई एक भी पढ़ो कोई नौकरी के ओरिएंटेड हुआ है पाठ पढ़ करके? काहे काम लोग से पागल होते हैं? क्या मिलता है उसमें? क्या दो रोटी नहीं खाने के लिए नहीं मिलेगा? काहे को हम उसे धक्कल देते हैं उनको मर जाने के लिए? नौकर बनकर मर जाए, जीवन को खत्म कर दे। मनुष्य जीवन है, कितने दुर्लभ है, उसको कहे को उसके लिए हम धकेलते हैं? उनको शुरुआत में कुछ ट्रेनिंग दे, कुछ विकास दे, ताकि सही मनुष्य एक बार इस लाइफ में बने, बाकी जन्म में फिर प्रमोशन होगा। थोड़ी दिन का तो खेल है। ये फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करेंगे तो इसी से ही फिर कीड़ा मकोड़ा बनकर जाएंगे। ऐसे कीट करकट बनाने के लिए क्यों तुले हुए हैं हमारे बच्चे को? तो इस प्रकार मैं कहना चाहता था कि अनुसुया जो 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 अनुसुया की माता कौन थी? देवहूति माता। देवहूति माता कर्दम जी को विवाह की, और विवाह के बाद में भगवान भागवत वर्णन होता है किस प्रकार स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। इतने सुंदरी देवहूति को शादी करने के बाद भी उन्हें फिर तपस्याएं बढ़ गए। देवहूति माँ उनके तपस्या में उनकी सेवा करते करते वो तो इतनी रुग्ण बन गई कि उनके सारे सौंदर्य मिट्टी हो गई। कपड़ा धोने के लिए टाइम नहीं मिला, खाने के लिए शरीर गल गया, कपड़ा गल गया, शरीर उनका मैटेड हेयर हो गया, जट लग गए सारे। अंदर में रो रही थी, बोला पता नहीं कैसे पति यार मतलब देखते भी नहीं है, दिन भर तपस्या कर रहे, मैं ऐसे काम करते करते आश्रम का मैं ही मर गई, लूट गई मैंने। लेकिन पिताजी को फोन नहीं किया, मैं डिवोर्स करता हूँ जाता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी पड़ी रही। और अंततः उनके मन को जब समझे जाने, तब कर्दम मुनि ने उनको बोले कोई बात नहीं, एक बार स्नान कर जो, मैं समझ रहा, एक बार इस सरोवर में अंदर डुबकी लगा कर आई, हजारों देवकन्या आकर के उनको ड्रेसिंग करने लगे, हजारों देवकन्या में। आप कितने ब्यूटी पार्लर से चले जाओ, ऐसा हो पाएंगे इसे सुंदर? लाखों रुपया खर्च कर दो ब्यूटी पार्लर में, प्लास्टिक स्किन सर्जरी कर लो, तभी थोड़ी होगा। लेकिन ये देवकन्या में देव देवती माता को ऐसे कर दिया ट्रांसफर, और ऐसे एक प्लेन दिए, सेलेस्टियल प्लेन। आप भागवत में वर्णन है, हम तो सोच भी नहीं सकते क्या क्या व्यवस्था था प्लेन के अंदर। वर्षों उसमें भ्रमण किए कर्दम देवहूती, नौ पुत्री हुए थे उनके, नौ बेटियां हुई थी, और नौ बेटियों को ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के एक एक करके शादी दिलाई अपने बेटों से। ये भी उनके बेटे थे, ये अत्रि पुलह पुलस्ती और ऋषि सब, वो तो कोई थे ही नहीं, कहाँ बुलाएंगे, और कहाँ से डॉक्टर नहीं, वैसे ग्रेजुएट थे पढ़े लिखे, उन्हीं को बुलाया बेटों को। बोले देखो कुछ तो, बोले हम शादी नहीं करें, बोले छोड़ो बाकी जो शादी उनको बुलाए, बुला कर सबको शादी करा दी। उनमें से अत्रि को स्वयं ब्रह्मा जी ने अनुसुईया देवी को शादी दिलाई थी, ब्रह्मा जी ने कन्यादान उन्होंने की थी। बेटी तो थी कर्दम ऋषि के, लेकिन उनके गंडप्पा उनके दादाजी आकर उनका कन्यादान कराए, शादी कराए थे स्वयं ब्रह्मा जी आकर, क्योंकि दोनों उनके बेटे, वो भी बेटे के साथ करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के देवहूति माता ब्रह्मा जी के रिलेशन क्या लगेंगे, पोती पोती को पुत्र के साथ दादा ने शादी करा रहा है, क्या ब्यूटीफुल रिलेशन अरेंजमेंट है ना। दादाजी कन्यादान कर रहे हैं पोती को अपने बेटे के साथ, है ना। तो जो भी हो, तो करा करके जब वो कर्दम ऋषि को नौ कन्याओं को नौ ऋषि के साथ, तो अनुसुईया जी को अत्रि ऋषि के साथ विवाह। तो अत्रि ऋषि बोले भाई हमारा तो कोई नौकरी वाकरी तो है नहीं, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, व्हाट जॉब आई एम डूइंग, जंगल के अंदर तप कर रहा हूँ, चलना पड़ेगा। तो भी तपस्विनी बन करके आई, देखी वो विदा कर दी। अब देवहूति माता ने विदा की, बोले जाओ यहाँ तपस्विनी बन के रहो। बोले मैं भी तपस्विनी बनी थी ऐसे ही, मेरा कैरियर भी शुरू ऐसे हुआ है, तुम भी ऐसे बनो, है ना। तो उनको ही बनाई, तो तपस्या अनुसुईया जी आकर के ऐसे घोर, भगवान राम आने से पहले वो आए थे, मतलब 20.5 लाख साल पहले भगवान राम आए थे, उनसे पहले तब अनुसुईया जी शादी होने के बाद में ऐसी बढ़िया जगह रहने के लिए आई। आजकल कोई शादी करने के बेटी को विदा करते हैं, देखते हैं कि रोड ही खराब है इसे गाँव में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फोन ही नहीं है, कैसे कन्या बेटी दूर, यहाँ फोन नहीं, फेसबुक कनेक्शन नहीं, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलता, कैसे शादी कर सकते। लेकिन यहाँ अभी भी तो सही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो गया, तब क्या होगा आप सब। लेकिन यही विदा करके दिए थे, अपने पति के साथ तपस्विनी बन करके यहाँ आकर रहने लगी। आप देखें ना पहाड़ बिल्कुल कैसे खड्डी पहाड़, कैसे चढ़ेगी शादी के बाद पहली बार राजमहल से आएगी इस घोर जंगल में। आप लोग दो दिन बस में चल करके बुरी हाल आपका, प्रभु जी बोले नहीं मैं रेस्ट करूंगा, जा नहीं सकता और उनको रहना होगा पूरा जिंदगी यहाँ रहना है। अगर आपको बोल दिया जाए जीवन भर यही रहना, पंचवटी होटल में नहीं, वहीं छोड़ दे है ना, नहीं तो ही रहती थी। ऐसे कहावत है कि एक समय ऐसा आया, तो पति तो तब समय रहते थे और तपस्या में सहायता करने वाली हुई, उनको पतिदेव बढ़ जाते थे ध्यान में, और अनुसुईया जी जा करके उनकी व्यवस्था करना, उनकी जो भी मदद करना, जो जो आवश्यकता सामग्री सब देती थी, बरात करती थी, अपने कुटिया साफ सुथरा रखना। दिस इज द ट्रेनिंग। मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली मंदिर में एक क्लास में प्रभुपाद लीलामृत का क्लास दिया होता था, मैं सब्जेक्ट पढ़कर देख रहा था, उसमें प्रभुपाद जी ने लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ अगर कोई लड़की केवल दो ही योग्यता अचीव करे तो आई विल टेक पर्सनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए एक सही योग्य वर ढूंढने के लिए मैं दायित्व लूंगा। लेकिन उनका दो क्वालिफिकेशन होना चाहिए लड़कियों का, क्या दो क्वालिफिकेशन, शी शुड बी चेस्ट, शी शुड बी गुड कुक, दैट्स इट। एक अच्छा कुक होना चाहिए और पति के ऊपर विश्वास होना चाहिए, यही दो ही योग्यता, उनके जीवन सफल इसी में हो जाए। प्रत्येक स्त्रियों का जीवन इसी दी चीज में टिका हुआ है, और आजकल तो सब पढ़ पढ़ कर नौकरी बनते, कुकिंग कहाँ जानते, कुकिंग थोड़ी वो जानते भी है, आता भी है, वो करने के लिए टाइम नहीं, बहुत बुरी हाल। तो देवहूती अनुसुईया माता यहाँ रही, सेवा करती थी। इसे वर्णन आता है एक समय कि अकाल आ गया। अकाल समझते हैं ना, क्या अकाल होता है? बारिश नहीं होना कंटिन्यूअस फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक बारिश नहीं, एक बिंदु भी बारिश नहीं हुआ। तो जितनी बनानी जंगल पहाड़ सब सूख गया, पशु सब मरने लगे, महा घोर अकाल पड़ गया, सब हाहाकार मच गया। अब अत्रि ऋषि कई तपी जपी ऋषि सब अब हतप्राण होने लगे, कईयों के शरीर छूट गया। कोई व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी तो था नहीं पानी सप्लाई दे, तब ये धारा नहीं था। तब इतने जब अवस्था खराब होने लगा, लेकिन फिर भी वो लोग स्थान छोड़ करके, भजन छोड़ तपस्या छोड़ कर नहीं जाते थे। हम लोग तो 2 दिन में आधा घंटा को भाग जाएंगे, होटल चेंज कर देंगे, लेकिन वो नहीं गए। तो फिर अनुसुईया माता देखा कि पति को कष्ट हो रहा है और जंगल में पेड़ पौधा सूख जा रहा है, फल मूल कंद भी नहीं मिल रहा है, वन्य जंतु वन्य प्राणी सूखे सूखे मर जा रहे हैं। तो उनके अंदर दया भाव हुआ, उन्होंने कठोर तप की, तपस्या करके प्रार्थना की गंगा जी को। गंगा जी भी बरवश हो गए उनके प्रार्थना से, प्रसन्न होकर बाध्य होकर के एक धारा इधर प्रवाहित होने लगी उनके आश्रम के पास से। तो उनके प्रार्थना से वहाँ स्वर्ग गंगा मंदाकिनी प्रकट हुई, स्वर्ग से गंगा प्रकट हो गई धारा लेकर। ये धारा ही है स्वर्ग गंगा कर बोलते हैं उसको, मंदाकिनी धारा। और धारा प्रकट कर दी, वो सारे इस वन क्षेत्र सब लोग खिल खुल उठे, सब पेड़ पौधा अपने जीवन प्राप्त किए, पशु पक्षी सब किए, और जितने ऋषि मुनि सब जल शुद्ध जल प्राप्त किए, स्नान खान पान, जल ही तो जीवन है। हमारा शरीर में 75% तो पानी है। तो इस पानी की व्यवस्था अनुसुईया माता की थी। किसने की थी, क्या था पति उनका? केवल पतिव्रता, वो एक ही तपस्या थी, पति प्रसन्न करके पति की तपस्या से साथ दे करके गंगा प्रकट कर डाली, यही पतिव्रता। इसमें और एक घटना है बहुत सुंदर, कथा आप लोग सुने होंगे। ये जो गंगा प्रकट हो गई, सब प्रकट हो गई दुनिया में, तो सभी लोग उनको जय जयकार करने लगे, सती अनुसुईया की बड़ी प्रशंसा होने लगा सब जगह, कि उन्होंने पूरे अंचल को उन्होंने अपने तपोबल से पतिव्रता बल से गंगा धारा को प्रकट करके इतने बचाई जीवन दी सबकी। तो नारद जी तो इंटरनेशनल मैसेंजर है, मैसेज कैरियर है, तो उन्होंने घूमते थे, उनको रिपोर्ट मिला, तब ये सब ये टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह नहीं था कि आज तक नहीं था। तो नारद जी वो आज तक है, सुपर आज तक है, करंट मैसेज से वही देते हैं सब। तो उन्होंने गए थे, वो ट्रैवलिंग तो करते रहते हैं, वो गए थे देवलोक में, जा करके वहाँ उनसे से वो बैठे थे अपना, जब स्त्रियाँ जब बैठते ना एक साथ में बैठते हैं घाट बाट में सब, वहाँ बैठे थे, तीनों सहेली थी, सरस्वती पार्वती और लक्ष्मी, वो तीनों बैठे, तीनों हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आई थे, तीनों एचओडी हैं, तीनों एचओडियाणी वो बैठे थे। हिंदी में ही बोलते ना, अलग कुछ बोलते हैं। एचओडी पत्नी को क्या बोलेंगे इस भाषा में? एचओडिया नहीं है ना। तो तीनों बैठ के अपना बातचीत चल रहा था, जब बात छटते अपना पत्नी को बात छो, नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, नारद जी क्या करंट मैसेज है? नहीं, नारद जी विशेष सम्मान सब करते हैं क्योंकि फ्रेस इन्फॉर्मेशन उनके पास मिलता है, अब भी बिल्कुल करंट मैसेज। बोले करंट मैसेज? बोले क्या बताऊं, आप मत पूछिए, पूछिए मत, आपको ही खराब लगेगा। नारद जी बोले आपको खराब लगेगा, मैं बोलता हूँ, जब ऐसे कोई बोलेगा ना आपको तो बोलेंगे उसी को ही बोलिए, जानते ना नहीं। कभी कभी आप थोड़ा सोच कर देखिए, आप शाम को अपने घर में सोए होंगे, कबाट बंद भी किए होंगे, आप घर में सोए होंगे, 9 बज गया होगा, 9:30 बज गया होगा, कोई आएगा आप घर के पास, थोड़ा ठक ठक है, दरवाजा खोले, प्रभु जी क्यों आए थे? ना जस्ट आप ऐसा करना, दरवाजा बंद करके सोना। क्यों? मैं बोल दिया भाई, समझ लो मैटर सीरियस, दरवाजा बंद करके सोना। और चला गया उन्होंने, आपका क्या होगा? नींद हराम हो जाएगा। क्या होगा? दरवाजा बंद करके आपका पूरा नाइट खराब हो जाएगा, केवल इतनी बातों पर। अब नारद जी इसी ड्रामा के बोले, मैं तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका ही, आप टेंशन में आ जाएंगे, अब क्या बताऊं, जो अभी का समाचार, जो ताजा समाचार जो है वो आप संभाल नहीं सकते। अरे प्लीज नारे, मैं क्या बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे तुम? क्या बताऊँ, ताज़ा समाचार के हिसाब से आपका तो पोस्ट पोजिशन गया। कोई दिया दो नौपे समय आपको पूछते नहीं, क्या नहीं पूछते रहे? अनुसुईया जी का मार्केट, आपका तो कुछ भी नहीं। सारे दुनिया में सती शिरोमणि अनुसुईया देवी, आपको तो कोई पूछता भी नहीं ना। नो मार्केट, बिल्कुल डाउन आपका चल रहा है। तीनों तीनों बैठे थे, एक दूसरे को देखने लगे, क्या बोल रहा है? हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुच्छ, कोई नहीं पूछेंगे। बड़ी बुरी लगा उनको, तीनों तीनों कमर कस ली। बोले कैसे इसे होगा, देख लो। बोले हम देखना, देख लो, लगा लो जितना आपका है, जो कुछ करना कर लो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता आप कुछ करेंगे। तो गए आप, तो गए, और आपका कुछ आएगा पोस्ट पोजिशन में आशा भी नहीं करता हूं ना। ये बुरी हाल मार्केट में हो चुका है आपका, और चलेगा नहीं आप। तो तीनों को तीनों कमर कस ली, नारद जी चले गए नारायण नारायण कहकर, लेकिन छोड़ गए उनके अंदर तो इतने द्वेष भावना बढ़ गया। बोले कैसे बदला लेने का प्रवृत्ति के उनके अंदर तो बड़े जबरदस्त होता है। कमर कस लिए तीनों, तीनों कसम खा ली उसी समय से, वहीं पर तीनों ही, हम भी देख लेंगे, हम भी कुछ कम नहीं है, मैं भी लक्ष्मी हूँ, मैं भी दुर्गा जी हूँ, मैं भी सरस्वती हूँ, कम थोड़ी है। हमारे पति हैं, एचओडी हैं, एवो डिपार्टमेंट हेड है, इसे क्या समझ रखा है? एक कोई गाय चराने वाले थोड़ी हैं, हम भी देख लेंगे। कैसे देखते हैं आप? जाकर उनके पावर, पत्नियों के पावर तो पति होते हैं, उनकी यूज करेंगे अल्टीमेटली। और जा करके अपना शुरुआत कर दे, जो आपने जो आप भाव हंग भंगी जो सब होता है व्यवहार ऐसे किए, अब पतिदेव से पूछने क्या हो गया फिर, खैर क्या हो गया, क्या ना क्या हो गया, अब मार्केट डाउन हमारा सब, तब क्या करें? तब ले दे करके उनको इसी प्रकार से मोल्डिंग किए। बोले आपको करना होगा क्या, जा करके उनके सतीत्व को नष्ट करना पड़ेगा भाई, हु कर कु। अब पति तो वचन ले लिए थे, उनको बाध्य कर दिए, अब जाना पड़ेगा। तीनों अपना अपने पत्नी को, पतियों को फोर्स किए, और तीनों पति भी चले नाक कान रगड़ कर राजी हुए, और क्या करेंगे। घरणी के बाद मालूम नहीं पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो आए रास्ता में तीनों भेंट हुआ। जो रिजर्वेशन करके आए थे वो अपने घर से आए, तो अपने तीनों तीनों रास्ता, तुम यही से मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वही स्टेशन तुम्हें, तो मैं भी स्टेशन उतरूंगा सेम बुकिंग है सभी का, किसी लिए ना एजेंडा भी सेम सेम एप्लीकेशन लेकर सभी आए। तीनों मिल के बोले, जो आप तो साहस बढ़ गया, मैं अकेला था, सोच रहा था मैं कैसे करूँ, आप ना मैं, तीनों मिल के बोले चलो। जब तीन फेज लग गया, थ्री फेज में चलेगा, तो भाई तो तीनों गए। अब जाकर खूब सलाह सुथरा किए, आते समय में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बोले इसे समझ आएंगे जब अत्रि जी घर में ना होंगे। तो बहुत सोच विचार करके आए तीनों, आकर के इस घोर घनघोर जंगल में आकर के तापस वेश बनाए। जब कोई अन्याय अनिति अकर्म करना होता है ना, हमेशा जुग जुग में ही हुआ कि लोग धोखा देने के लिए साधु वेशभूष अपनाते हैं। हाँ, ये जुग जुग में देखा गया। हाँ, मैं सही बताता हूँ, ये सत्ययुग की बात मैं कहता हूँ। ये तीनों एचोड़ी यही रूप ली, अरे ये कोई अच्छा काम थोड़ी था, किसी सती स्त्री को सतीत्व को अपना कोई अच्छा काम थोड़ी था। आ जब था तो तुम अपना रूप चेहरा ड्रेसिंग पहनने घर के जाओ, फंसाओ उनको, नहीं कैसे गए तपस्वी बन कर। ये तो सत्ययुग में था, सत्ययुग में, सत्ययुग में इंद्र भी जो पृथ्वी महाराज के यज्ञ में घोड़ा चोरी करने के लिए गया, चोरी करने का काम चोर बनकर करना था, लेकिन क्या बनकर करने गया था, साधु बनकर। तृतीय युग में प्रसिद्ध है क्षेत्र रावण का, वो भी सीता हरण करने के लिए आया, तो कौन सा ड्रेस, सत्य ड्रेस पहन कर आया, साधु। द्वापर में अर्जुन, याद नहीं आप लोग, अर्जुन सुभद्रा को जो किडनैप किया, कैसे बन कर गया थे, त्रिदंडी सन्यासी। हाँ, त्रिदंडी सन्यासी बने थे। और कलयुग में तो बोलना नहीं है, ऐसे भरे पड़े। तो इस युग युग में चलता है, तो तीनों ने जा करके अपना मेकअप करके आप पहुँच गए भवत भिक्षाम देही हाँ लेकर पहुँचे। अनुषादी बोले आज द्वादशी है, कल एकादशी, ठीक डेट पर गए थे। द्वादशी के दिन साधु भोजन कराना है, विधि है, साधु सन्यासी ब्राह्मण भोजन कर, और उसी में बिल्कुल सुबह सुबह पारायण के समय में भवत भिक्षाम देही। वहाँ के बाहर देखे कि तीन बड़े तेजस्वी साधु सन्यासी पहुँचे हुए, ठीक है मैं देता हूँ, हमारे घर में जो भी है आपको देता हूँ सब, आइए बैठिए भोजन करिए, द्वादश पारायण आज जब भी भोजन करूँगा मेरा सौभाग्य है, पतिदेव तो तप में है और आप बैठिए, जब आप आए हैं आप साधु सन्यासी हैं, मैं सेवा करूँगी। एक दूसरे को देखने लगे, राजी हो बोला नहीं बोले, सब मिल कर सलाह कर बोले देखो हम नहीं जाते हैं, दूसरे किसी गृहस्थ घर में हम नहीं जाते, लेकिन हम भूख लग रहा है, प्रसाद तो चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं। नहीं कैसे ना, हम प्रसाद तभी लेते हैं, हमारा कंडीशन है, क्या कंडीशन ना, अगर अब भी हमको भोजन चाहिए और पति नहीं है आप घर में, तो अगर आपका घर में भोजन करने जाएंगे तो आपको नग्न अवस्था में हमको गोद में बैठा करके खिलाना पड़ेगा, तब हम खाएंगे, हमारे कंडीशन है। बोलकर एक दूसरे को मुंह देखे बोले हाई डोज हुआ ना, हाँ डोज प्रॉपर है, तीनों ऐसे बोले। अनुसया माता बोलिए किसी गड़बड़ बात है, पतिदेव घर में नहीं है, हाँ मैं युवती स्त्री हूँ और आप नग्न अवस्था में मेरे गोद में बैठकर खाएंगे, आप लोग सो तेजस्वी युवक हैं, इन्हें ऐसे कैसी हो सकता है, ये तो बड़े उत्पटांग बात है। बोले मैं बस नहीं तो हम जाए, द्वादशी में खिदार तो होकर आए हैं, अगर नहीं हम जाए। अनुसया जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, बोले कैसे करो, प्रार्थना की पतिव्रता के बल से उन्होंने राजी हो, बोले नहीं मैं आप अतिथि साधु मेरे घर में आए उनको अतिथि देवो भव, उनको हम प्राप्त नहीं करूँगा, आप आइए, ठीक है मैं राजी हूँ, राजी है ना, हाँ आइए। जैसे घर में घुसे आपने पतिव्रता के बल से तीनों को तीन तीन महीना के शिशु बना दिए, तीन तीन महीना के बन गए, तीन महीना के लड़के कैसे होते हैं तो मैंने करवट नहीं बदल सकते हैं, बदलते हैं मतलब अगर ऐसे रहे तो ऐसे भी नहीं हो सकते, उठाकर पलटना पड़ता है दूसरे का हेल्प चाहिए साइड डाउन करने के लिए, अपसेट डाउन। तो ऐसे तीन महीना शिशु तीनों को कर दिया, चें चें कह के करने लगे, रोने लगे तो उनको कर दिया इतने इन्फेंट तीनों को कर करके बस नग्न होकर बैठे, तीन तीन महीना के छोटे शिशु क्या डर नहीं हुए, गोद में बैठा कर खिला चम्मच से, आधा चम्मच से मुँह खा लो बेटा खा लो, ऐसे हाथ में खिलाए, वो पेशाब करते करते खाए, अब कहाँ कर रहा है, अब आप क्या करें बेचारा, तीन महीना के शिशु बन गया, अब तो जा नहीं सकते, करवट नहीं बदल सकते, कहाँ जाएंगे ऑफिस में, आपका ऑफिस फाँका छुट्टी, कहाँ गए को पता ही नहीं, अब यहाँ तीन महीने के शिशु बनकर बैठे हैं, बैठे तो बैठे, अब एक दिन एबसेंट, दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, ऑफिस के बाद छोड़ो घर में घरणी घुसने कहाँ गए, फोन कर, फोन नंबर तो था नहीं, जो भी था करना चाहिए, थक गए बता करते करते है ही नहीं, महीना दिन बीत गया, विकल हो गए, बोले क्या हो गया, इतने सर्वसमर्थ हमारे पतिदेव इतने क्या हो गया, हमको आते ही क्यों नहीं, हमको भूल कैसे गए, परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते, कोई नहीं खबर मिला, अंत था नारायण नारायण, नारा जी ने फिर आ गए, ताजा खबर बिल्कुल आज तक न्यूज ताजा खबर, आप सब बोले किस्त तो मिलेगा ताजा ना, है इंफॉर्मेशन मेरा पास है, जो आप ढूंढ रहे हैं सोच रहे हैं आज का डेट के न्यूज में है मेरे पास, कृपा करके बताइए, रो हम पति छोड़ के चले गए, बता नहीं कहाँ है, है? है? कैसे है ना, है ठीक ठाक है, दूध खा रहे हैं, अमूल खा रहे हैं मेरा पास ये नहीं तो फट उठा के ला के दिखा देता है ठीक ठाक ना, उनको थोड़ा बोली हम याद कर रहे हैं तब से बड़े दुखी हुए ना, क्या वो आ नहीं सकते, वो आ नहीं सकते, नहीं याद तो उनका होता होकर पता नहीं, लेकिन आ नहीं सकते, इसे स्थिति में नहीं क्यों आ पाएंगे, नहीं क्या हो गया, आ नहीं पाएंगे ना, नहीं आ पाएंगे, फिर हम कैसे मिलेंगे, मैं क्या कहूँ, क्यों क्यों नहीं आ पाएंगे, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं हमारे पति ना, तीन महीना के हैं उनका ड्रेस फिर से पड़ा है, अब तो नंगे हैं तीनों, है ना, उनके साइज में भी वस्त्र भी नहीं मिला। सुन कर तो तीनों हलक सुख गए, क्या हो गया? अरे हमारे तीनों पति चोरी थी, तीनों तीन तीन महीने के बचना है, और कैसे आ सकते, आ नहीं सकते ना। नारद जी कुछ करो, बहुत गिड़गिड़ा कुछ ना, देखो आप देखो बड़े बड़े देवी है माता जी, अब क्या करें, आप बोलते तो मैं उपाय बता दूं। हाँ प्लीज प्लीज, देखो वो तो नहीं आ सकते, आप जा सकते, मिलना चाहते आप मिल सकते ना, प्लीज बताओ एड्रेस दीजिए हम जाए, एड्रेस बताए दो तो नोट डाउन करो, एड्रेस नोट डाउन करके चले गए, बोले यहाँ है, अब जाओ वहाँ से इलाहाबाद से नैनीबी से चित्रकूट, चित्रकूट से यहाँ है वहाँ अनुसार जी का आश्रम है, यहाँ बता दो 21 किलोमीटर वहाँ से। तो तीनों आपने जो भी फ्लाइट बुकिंग किए होंगे, जो कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट लिए, सीधा लैंडिंग यहीं किए, करके पहुँचे, पहुँच करके डर लग रहा था क्योंकि वो तो अंदर में है, बोले तो बेडरूम में होंगे, बाहर तो आ नहीं सकते, आपके बेडरूम में अंदर जाकर देखना पड़ेगा, अनुसुईया जी के बेडरूम के अंदर। लेकिन डर लग रहा था क्योंकि खूब सुने अनुसुईया जी का, नारद जी ने खूब बताया उनके पावर के बारे में, डर रहे थे कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे, डर डर करके गए कि समय में जाकर बेडरूम में खिड़की के पास झांके, देख करके और कंफ्यूज हो गए, रोने लगे, क्या कोई पहचान ही नहीं पा रहे थे कौन किसी का पति, पहचान में नहीं आ रहा था बताओ ऐसे कभी हो सकता है, विवाहिता पत्नी अपने पति को भी नहीं पहचान पाए, पत्नी पति सामने सो रहे रो रहे उनको नहीं पहचान पाए, आप है कि वो है बेचारे फंसे हुए तीनों को तीनों, तो क्या करें तीन 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 महीना के बच्चे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, परेशान हो गए, अब क्या करें, अगर हम मनुष्य जो मांग कर ले भी लेने, किसको ले लूं, गड़बड़ी से दूसरे किसी को तो नहीं ले लूं वहां जाकर पता चला कि माल डुप्लीकेट है ये तो नारायण नहीं, मैं तो ब्रह्मा जी को ले आया कि शंकर को ले आया, किसको ले आया पता नहीं, हमारे प्रभु जी कौन है कैसे पहचानेंगे, पहचान ही नहीं पा रहे थे। अंततः कोई निरुपाय होकर, कोई उपाय नहीं था, अनुसुईया जी के शरण में गए, रोध होकर जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बोले देवी हार गए, कान नाक पकड़ गए, बहुत हो गया, हम आपसे बदला लेने के लिए वो बेड़ा उठाए थे, अभी बहुत हो गया, हार गए बुरी तरह से, प्लीज कृपा करो, खोल करके बड़े गिड़गिड़ाए प्रार्थना की, अपने आईडी प्रूफ दिखाए, बोले हम ये अच्छा ये, बोले ये जो तीनों को बच्चे बना रखना ये वो है, अरे माय गॉड मुझे पता नहीं था, वो तो साधु बन कर आए थे, मुझे थोड़ी पता था मैं साधु है ना, नहीं नहीं ऐसे ऐसे बात है। तो अनुसुईया जी ने फिर बोले रिलीज कर दे, बोले चलो छोड़ देता हूँ, छोड़ दे, बोले अब तो भिक्का भिक्का नहीं मांग, अब तो क्या मांगेंगे, वो तो बोल लेने की शक्ति नहीं, तो उनको रिलीज कर दिए। तो फिर तीनों अपने अपने फर्म में आ गए, तो अपने अपने लेकर के गए, उस दिन नाक पर राग पकड़े, बोले आप ही पोस्ट सती, हम हाँ, आपके समान सती है ही नहीं, इस प्रकार सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार किए थे अनुसुईया जी ने। तो केवल सतीत्व के बल पर उन्होंने त्रिदेव परीक्षा कर चक्र उनको परास्त कर दिए थे, तीन देव तीन देवी सतीत्व के पराकाष्ठा के बल के सामने पराभूत हो चुके थे, हार गए थे। तो वहां आप जब दर्शन किए होंगे, कई सती स्त्रियों की चरित्र वर्णन किया गया है, कई सतियों की, सतीत्व अपने आप में कि इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है, उनके सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकता। आप भरी भरी प्रमाण पड़ा है सब शास्त्र पुराण में, आप सुने होंगे एक वृंदा देवी के, वृंदा जी जो डेली हम वृंदा तुलसी देवी जानते, वृंदा देवी के बारे में जानते हैं हम लोग सब, वृंदा देवी भी यहाँ उनका नाम नहीं लिखा था, वहीं देख रहा था, उन लोग को आइडिया नहीं, बेचारे महासती वृंदा देवी भी है, वृंदा जी भी लक्ष्मी की सिस्टर है, लक्ष्मी की बहन है वृंदा। तो उनके विवाह किसके साथ हुआ था, किसको पता है, कैसे जलंधर के साथ हो गया भाई, भाई जब लक्ष्मी जी के सिस्टर है उनका शादी को रेखा के साथ कराएगा, कैसे हो गया फिर, कैसे राजी हो गए भाई, हाँ लक्ष्मी तो दूसरा है, वृंदा देवी अलक्ष्मी नहीं है। अलक्ष्मी किसकी शादी की थी किसी को पता है? समुद्र मंथन में वो भी निकली थी। लक्ष्मी निकलने से पहले एक और स्त्री निकली थी जिसका नाम थी हतलक्ष्मी, अलक्ष्मी वो भी निकली थी, लेकिन कोई उसको राजी नहीं हुई लेने के लिए। सब दुर्दुर के हटो 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 की वो तो रोने लगी। लक्ष्मी जी तो शादी कर ली नारायण को जाकर के, वो तो रोने लगी, कोई उनको चाहते नहीं है। लक्ष्मी बोला पति के बोले देखो ये इन्होंने रो रही है, मेरे सिस्टर है, कुछ कीजिए व्यवस्था। तो भगवान ने ऋषि को बुलाया, ऋषि को बोले उनको शादी कर लो। तो भगवान के मान करके बात मान लिया और शादी कर लिया उनको, उनको लेकर गए। तो शाम के समय हो रहा था और संध्या वंदना करने के लिए, जैसे गायत्री करने के लिए आचमन करने बैठे हुए बिगड़ गए। बोले आचमन क्यों कर रहे हैं? ना शुद्धि शुद्धि नहीं होना चाहिए, मैं नहीं रह सकती हूँ शुद्धि स्थान में, परिष्कार परिश्रुति ये सब शुद्धि स्थान में नहीं रह सकती हूँ, नहीं वो गंदा रहना पड़ेगा, शांता नहीं करना होगा, अलक्ष्मी है अच्छी चीज पसंद नहीं उनको, वो तो परेशान हो गया, क्या करूँ मैं, इसी भगवान दे दिए मुझे क्या करूँ। तो बड़े सोच विचार कर, बड़े चतुर होते हैं कृष्ण भक्त, बोले ठीक है ऐसा करो, अब क्या करूँ देवी, आप इधर बैठे मैं थोड़ा जाकर यहाँ से दूर करा। तो बस बैठे मैं गया हो रहा है, पक्का ना मैं आता हूँ। ये पीपल पेड़ के नीचे उनको बैठा दिए, बैठा करके ऋषि जी चले गए, जाकर वो वापस नहीं आए, वो वापस ही आए ना भाग गए वहां से। बोले बाप रे बाप, कौन लिखा पढ़ा करेगा अभी, वो बेचारा बैठी आएंगे आएंगे करके आई नहीं, पीपल पेड़ के बैठ के रोने लगी। रोने लगी तो लक्ष्मी जी को पता चला, कोई फोन फान तो की होंगी, पता नहीं कैसे खबर दी उन्होंने। तो लक्ष्मी जी को फिर वैकुंठ पता चला, बोले मेरी बहन रो रही है। तो भगवान बोले तो क्या करना, चलिए थोड़ा उनको देखते कराते हैं। तो लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी जी अपने पति के साथ में वो आए उस पीपल के पेड़ के नीचे, आकर के उनको कंसोल किए। बोले कोई बात नहीं, देखें कोई बात, तुम रहो इधर ही रहो, कोई बात नहीं, हम हर हफ्ता विजिट करेंगे। तो उस दिन शनिवार था, हर शनिवार के दिन तो पीपल वृक्ष में लक्ष्मी नारायण प्रकट होते हैं उनको सांत्वना देने के लिए। तो हतलक्ष्मी की हम रख कर चले गए ले बस। इसलिए कहीं कहीं कहा गया कि शनिवार के अलावा दूसरे दिन पीपल पेड़ को छूना नहीं है, क्योंकि वो बैठी है, फिर राजी ना हो जाए आपके ऊपर। केवल शनिवार के दिन, क्योंकि लक्ष्मी नारायण स्वयं आते हैं, इसलिए उस दिन पूज्य, उस दिन पीपल की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण आते हैं। तो इस प्रकार, तो इस प्रकार वृंदा देवी भी थी, लेकिन जो जलंधर है और राक्षस थी नहीं, वो तो भगवान शंकर की बेटा ही थे। हाँ, शंकर पुत्र थे, वो भी समुद्र पुत्र है, वो भी समुद्र पुत्री है। जो भी हो, तो उनके गुण और उनके उनके बहुत बड़ा प्रभाव था जलंधर के, महावीर था उन्होंने, तो उनके साथ उनके शादी हुआ था। लेकिन वृंदा देवी तो विश्वास किए थे अपने माता पिता जिसके साथ उनको शादी दिए, बस उनके भाग्य में जो है वही है, उनको अपना मान ली, भले राक्षस क्यों ना हो। तो आपने इतने पतिव्रता थी, तो उनके पतिव्रता के कारण, शक्ति के कारण जलंधर को कोई मार ही नहीं सकते थे। इतने बली हुआ, तीन लोग को जीत करके देवताओं के नाक में दम करके रखा। सारे देवताओं ने जाकर शंकर जी के पास बैठे, शंकर जी ने आकर विदम युद्ध किए उनके साथ, बोले तू बदमाश लड़का है, युद्ध करके तीन बार उसको मार डाले, लेकिन मरता थोड़ी जी जाता है, पूर्ण शक्ति लेकर फिर आता है। उनको पता नहीं चलता फिर जी कैसे जाता है, फिर शक्ति कैसे आता है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके पति के सतीत्व के कारण ही बार बार होता है। हताश होकर शंकर जी जाकर भगवान विष्णु को बोले देखो भाई ये क्या हो रहा है, तो पहले कोई सब कुछ काम गड़बड़। विष्णु भगवान बोले आप ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं फायदा है, क्या आप चुपचाप बैठो, इफेक्ट कॉज और कोई है, इफेक्ट यहाँ होता है, कॉज यहाँ नहीं है। बोले आप युद्ध करो मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ से ठिकाना करूँगा मर जाएगा। तो भगवान भी वृंदा जी के पास डुप्लीकेट बेस बनकर, डुप्लीकेट जलंधर बनकर के आए, मालूम है ना, डुप्लीकेट जलंधर बन करके भगवान आए, आ करके उनके सतीत्व हरण करने गए। तो जैसे सतीत्व हरण के तुरंत भगवान शंकर के बाण से उनके गला कट करके घूम घूम कर जाकर उन्हीं के दरवाजे पर गिरा। वो देखा ये जलंधर है क्या है, तुरंत खड़ा हो गया, खड़े होकर चिल्लाने लगा बताओ कौन है सच कैसे। तो उनके क्योंकि पावर था, चाष्टी के सतीत्व का पावर था, तो भगवान भी अपने आप को सतीत्व के बल के सामने टिका नहीं सके, वो अपने को ओरिजिनल खोल गया, डुप्लीकेट भेस चला गया। तुम कैसे आ गए इस प्रकार, मेरे से चीटिंग कैसे किए आप, चीटिंग की इसमें मेरे पति का हत हो गया, नाश हो गया। ना हत, पति के नाश करने के लिए मैंने किया, आप ने किए। क्योंकि जब वो शंकर जी अग्रह सब बोले, भगवान नारायण बोले आप ही हाथ उठाओ, बोले देखो मैं लड़ूंगा कैसे, क्योंकि वो मेरे क्या लगेंगे, जमंधर क्या लगेंगे उनके, भिने सड़ू हाँ, मेरे सड़ू होंगे, मेरे सड़ू हैं, उनके साथ में कैसे लड़ू सड़ू के साथ कैसे लड़ू तो तो इसलिए आप लड़िए, मैं जाता हूँ पीछे काम करता हूँ। तो जाकर ऐसे कि तू बंदा जी समझ के बोले आप कैसे मेरे साथ के, बोले इसे इसे काम था ऐसे, तो मैं साफ दूँ ना चलेगा, मुझे मालूम था आप साफ देंगे, रेडी हूँ इसके लिए। तो साफ दे दिया आप, इतने निष्ठुर मेरे पति की, रहते रहते मेरे सामने मेरे पति को मरवा दिया, पत्थर हो जाए, सो बीट पत्थर हो गए, सालग्राम हो गए वृंदा की तपस। अभिशाप से भगवान सालग्राम शिला हो गए, लेकिन भगवान को साफ दे करके वृंदा देवी को बड़ी ग्लानि हुई, वह दुखी हो गई, बोला ना मैं बहुत गलती किया, मैं होश में आकर के इसे कर दिया, लेकिन आपको कैसे मैं इसे कह दिया, तुरंत आपने आपको पानी पानी कर दी, नदी होकर बहने लगी। भगवान ने बोले जब तुम नदी होगे तो मैं ही नदी में शिला बनूंगी वो गंडू की बन गई, तो गंडूक की शिला सालग्राम हो गई। तब देवी फिर पेड़ बनती है वृंदा देवी, भगवान बोले तू ही मेरे साथ रहे, रिश्ता हमारा पक्का है। ऐसे रिश्ता पक्का किए, बोले जब तक कोई भी चीज मुझे कोई भी दे, आपके बिना मैं अर्पण नहीं स्वीकार नहीं करूंगा, इतने भगवान भगवान। तो इस प्रकार सती वृंदा देवी, और एक सती की वर्णन आता है, क्योंकि सीता जी जब गए थे अनुसूया आश्रम में, अत्रि आश्रम में, तो अत्रि जी ने सीताराम को बैठा करके बोले रावण के खरदूषण का इन्फॉर्मेशन दिए, बोले कि ये रावण का बड़ा दंडकारण्य में शुरू हो रहा है, आप इसको आए हैं इस प्रकार इसको किए, ऐसे बताए थे। और उसके साथ साथ सीता देवी जा करके अनुसूया देवी को प्रणाम की, तो अनुसूया देवी उनको बैठा करके उनको शिक्षा देने लगी, सतीत्व की शिक्षा देने लगी उनको, क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार होना चाहिए, क्या गुण क्या श्रेष्ठता। स्वयं देवी अनुसूया ने वो कोर्स कराए, कितना दिन का कोर्स था पता नहीं मुझे, लेकिन वो कोर्स किए हाँ, सीता देवी ने कोर्स कंप्लीट की सतीत्व की कोर्स अनुसूया देवी से। उसी कोर्स में कहते हैं कि सती अनुसूया ने उनका और भी एक शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे, सती मदालसा कहते हैं उनका नाम, सदी ईसाई है, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु में, महाप्रभु ने उनकी बात ली थी, मैं इसलिए बोलता हूँ कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब चैतन्य चरितामृत के अंतिम अध्याय आप पढ़ेंगे, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भाव में आकर के जो शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक का गायन स्वयं करते हैं, उसमें ये बात रहते हैं, ये पद स्वयं गाते हैं, आपने शायद पढ़े भी होंगे कि नहीं पता नहीं। जो लास्ट श्लोक शिक्षाष्टकम का है, अश्लिष्यवा पादरतां विनष्टुमां करोतु वां जथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। इसी भाव में आ करके वो बोलते हैं, श्री महाप्रभु राधा जी के भाव में आकर बोलते हैं, कृष्ण जारे करे अभिलाष, मैं शुरू से पढ़ता हूँ अक्सर मन लगा, आमी कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि आलिंगिया करे आत्म साथ किवा न देन दर्शन जारे न मोर तनु मन तबु तेहु मोर प्राण नाथ सखी हे सुन मोर मनेर निश्चय किवा अनुराग करे किवा दुख दिया मारे मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नय छाड़ी अन्य नारी गण मोर वश तनु मन मोर सौभाग्य प्रकट करिया तास बारे देन पीड़ा आम मने सने करे क्रीड़ा सही नारी गणे देखाया। समझ में आता है किसको ना नहीं, नहीं, महाप्रभु ने श्री राधा जी के मूड में पद गाते हैं, बोलते हैं कि मैं कृष्ण के दासी हूँ और कृष्ण रसराज है, वो रसिक रस शेखर हैं। अगर मुझे रसिक शेखर के रूप में मुझे आलिंगन करते हैं और अनेक अनेक स्त्रियों को छोड़ करके मेरे साथ आकर के रमण करते हैं, तो दूसरे को दुख करके मुझे सुख देते हैं तो सुख देते हैं, तो मेरा प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नया, कोई अन्य नहीं है, वो भी मेरे प्राणेश्वर है। अगर ऐसा ना करके कि बात हो लंपट सथाधृष्ट निष्कपट न सकपट की बात हो लंपट सठ धृष्ट सकपट अन्य नारी गण करी साथ मोरे दीते मन पीड़ा मोर आगे करे क्रीड़ा तब ती हो मोर प्राण नाथ तभी भी आशीष्य पादरतांग पिनष्टवाम चाहे मुझे आलिंगन करे चाहे मुझे पदाघात करे मेरा प्राणेश्वर तो और कोई नहीं वही है, ही हैज ऑल राइट रिजर्व, वो मुझे जो चाहे सो कुछ कर सकते हैं, चाहे मुझे आलिंगन करे चाहे मुझे किक मारे, दोनों स्थिति में वही मेरे मालिक है। यही बात कहते हैं, कहकर कहते हैं कि कृष्ण जारे करे अभिलाषो मुई तार घरे जाया तार सेवो दासी भैया तबे मोर सुखेर उल्लास कुष्ठी विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वेश्यार सेवा स्तंभिल सूर्यर गति झियाइल मृद प्रति तुष्ट कैल मुख्य तिनी देवा। ये जो कहानी भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण जिसको अभिलाष करते हैं, राधा रानी कहते हैं अगर कृष्ण किसी स्त्री का अन्य स्त्री का अभिलाषा करते हैं तो मैं जा करके उनके घर में उनकी सेवा करूंगी, उनको हाथ पकड़ करके जुहार करके उनको लेकर आऊंगी कृष्ण के पास दूंगी उनको ला करके, तबे मोरे दासी हया तारे सेवु दासी हया तबे मोर सुखे रे उल्लास तब मैं सुखी होंगी, केवल कृष्ण मेरे साथ रहेंगे मैं सुखी हूँ बोले ये बात नहीं है। अगर कृष्ण मेरे से सुखी नहीं है, कोई दूसरे सुखी होना चाहते हैं तो मैं सर्वस्व त्याग करके उनके दासी वर सेवा करके उनको लाकर कृष्ण के पास कृष्ण को सुखी कराना चाहूंगी, यही है कृष्ण भक्ति। बोलते हैं कैसे न कुष्ठी विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, ये कहानी महाप्रभु कहते हैं, ये सती मदालासे की कथा है। कुष्ठ विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पति लागी कैल वेश्यार सेवा, पति के लिए वेश्या की सेवा की। स्तंभिला सूर्यर गति जिया इला मृत प्रति तुष्ट कैला मुख्य तीन देवा, तीन देव को भी तुष्ट कर दिए थे और स्तंभिला सूर्यर गति सूर्य को भी रोक दिए थे अपने पतिव्रता की। अब कहानी जानते हैं, इस प्रकार कथा है कि एक राजकुमार थे और वो भी एक राजकुमारी थी, सती थी, उनका नाम था मदाला से थी। तो उनके यद्यपि राजकुमार जो था कैरेक्टर अच्छा नहीं था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, समझते होंगे शराबी होगा जुआड़ी होगा जो भी कुछ खराब कैरेक्टर था, लेकिन कैसे भी कैसे तभी जमाने में तो सब ऐसे जो देख रेख होता था, जैसे पति भाई जो बड़े बड़े अभिभावक जिसका जहाँ शादी कर देते इसी करते थे, वो तभी जमाने से फेसबुक और ये सब तो उपाय नहीं होता था, जब पहले से पता कर ले जान ले मैं पहले देख लूँ, मुझे शादी करना है मैं नहीं देखूँगी दूसरा कैसे करेगा मेरे लिए, ये आजकल के सब फैशन है, लेकिन तब जो उन्हें ऐसा नहीं होता था, भगवान भरोसा करके भाग्य के हिसाब से जो उनको बड़ों ने देंगे उसी के भरोसा में रहते थे। तो इस प्रकार उनको उन्हीं के साथ ही भाग देना पड़ा, तो उनके कैरेक्टर थी, भले उनके पति मिस कैरेक्टर थे लेकिन वो कैरेक्टर थी फुल कैरेक्टर। उनके कारण में देखिए प्राय केस में ऐसे होता है कि क्या करूँ मैं तो भक्ति करना चाहती हूँ, पति देव नहीं करते हैं, ये करते हैं, ये केस भगवान चैतन्य महाप्रभु का कहना है। बोलते हैं कि उन्होंने कुष्ठ विप्रेर रमणी, वो इतने कैरेक्टरलेस था वो लड़का कि उनके राज परिवार से उनको उनके पिता उनके भाई लोग ने निकाल दिए, उनके दुष्कर्म घर से निकाल दिए, फिर भी जिसके खराब स्वभाव खराब कर्म करने लगा जिसके कारण से उनको कुष्ठ व्याधि हो गया, क्या हुआ लेप्रोसी अटैक्ड हो गया, राजकुमार था लेकिन इतनी बुरी तरह से कुष्ठ व्याधि हो गया, तो हाथ पैर सब सड़ गया गल गया, गल गया तो चल नहीं सका, चल नहीं सका तो उनकी ये पत्नी ने घर से निकाल दिया, गांव गांव में भिक्षा करके उनको लाती थी, लेकिन अब हाथ पैर गल गया तो भिक्षा करके लोगों को पूरी करके कोई कारपेंटर को बुला करके व्हील चेयर बनाया। आजकल किसी व्हील चेयर नहीं, एक कारपेंटर मतलब लकड़ी के ऐसे, इसको बहुत परिश्रम करता धक्का मार के चलाना, कोई ऐसे आजकल बल बरिंग लगा करके चक्का वाला नहीं, ऐसे गुलक कार्ट की तरह ऐसे व्हील चेयर बैठा करके उनमें उन पति को बैठा करके प्रतिदिन उसको लेकर जाए, गांव के बाहर रहना होगा क्योंकि गांव में घुस नहीं देंगे, दुर्गंध पेपर हटा दो। वो पति पत्नी ने उनके अकेली पेड़ के नीचे उनको सुलाती थी प्रतिदिन सुबह, गांव वाले उठने से पहले नदी के कनाल में ला करके उनके पतियों को उनका जो शारीरिक कर्म सब स्नान टान इत्यादि शौच क्रिया सब कराती थी, करा कर ला कर उनको पेड़ के नीचे फिर बैठाती थी, उनके मेडिसिन फिर लगा ठीक करती थी, फिर जाती थी भिक्षा करने के लिए, भिक्षा करके जो भिक्षा उपलब्ध होता था आकर बना करके फिर पति को खिलाने के बाद फिर इसको खाती थी। देखिए एक लेप्रोसी थी उनका पति और एक राजकुमारी। हम कुष्ठ व्याधि को देखने से कोसों दूर भाग जाते हैं, कंटाजियस से कैसे मिछूंगे, लेकिन ये देखिए उनके भाव को देखिए, उन्होंने उनकी सेवा पर्सनली अपने हाथ में करती थी सब कुछ, उनको सुला करके सोएगी, उठने से पहले उठेगी, उनको ले करके नदी में स्नान करा, गांव वाले उठने से पहले लोग करा कर ला कर बैठाएगी, सारे उनके सेवा करके स्वयं भिक्षा करने जाएगी, कोई गैस चूल्हा भी नहीं था, जो भी लाएगी कोई भी चूल्हा लकड़ी से मिट्टी के बर्तन में कैसे बना करके बुला कर उनको फिर खिलाएगी, लेकिन फिर भी वो दुस्स्वभाव था, फिर भी उनके ऊपर खुश नहीं थी, ना खुश थी वो जो लेपरसी पति था, वो फिर भी उनके पत्नी के ऊपर खुश नहीं था, लेकिन फिर भी बोले कुछ भी हो जाए मेरा दुर्भाग्य मेरा कर्म तो मैं करूँगी, मेरा वो करती थी। तो सभी गांव से एक गांव से तो हमेशा कोई कुष्ठ व्याधि को भीख नहीं देंगे, एक गांव से दो दिन के बाद तीसरे गांव तीसरे ऐसे घूमना पड़ती थी उनको, बहुत दूर तक परिश्रम करके धकेल धकेल करके ठेला गाड़ी में पति को लेकर जाना पड़ती थी, गांव से बाहर रखा करके फिर भिक्षा करके चलना पड़ती थी। एक बार दूसरे देश में गया था उन्होंने, दूसरे देश में जाकर भिक्षा करके नदी के किनारे था, तो इस देश में एक बेसिया रहती थी, बहुत फेमस बेसिया थी जिनका नाम था लख्य हीरा, नाम सुने होंगे आपने, क्या था लख्य हीरा, लख्य हीरा नाम इसलिए पड़ा था, पर वन नाइट 100,000 डायमंड कॉइन्स उनका डिमांड था, उनका रेट था, उन बेसिया का जो रेट होता ना उनका एडवर्टाइजमेंट निकल रहा था, उनका एडवर्टाइजमेंट पर डे रेट होता है 100,000 डायमंड कॉइन, $1 million पर नाइट, कितने बड़े आदमी होंगे, ये इसी कीमती बेसिया थी। तो उन्होंने स्नान करने के लिए, तब जमाने थे आटा बाथरूम हुआ नहीं करता था, तो नदी के पास में उनका पैलेस था, लख्य हरे का भवन, चंद्रमहल जिसको कहते हैं, चंद्रमहल भवन था उनका, और चंद्रमहल भवन से कम हजारों सहेली सखियाँ सखियों के बीच में लख्य हीरा देवी स्नान करने के लिए नदी में आते थे, वो नदी के किनारे पेड़ के नीचे उनको पार करके बैठा था वो सती ने अपने लेप्रोसी पति को ही रखा था, वो मांगने चले गए थे भिक्षा करने, उसी समय वो वैश्या लोग तो उठेंगे 10 बजे, उनको कहीं सुबह उठना है ना, 10 बजे उठते होंगे, उठ करके स्नान करने आते होंगे, हजारों उनके सेविक के सेविका सब आते हैं उनके साथ में, जब स्नान कर जाती थी वो जो लेप्रोसी घाट के पेड़ के नीचे बैठा था वो उनका नजर पड़ा, किसका ऊपर पड़ा, लख्य हीरा के ऊपर पड़ा, लख्य हीरा पर नजर पड़ा तो उसको देख करके वो तो बना रही इतनी सुंदरी, इतनी सो ब्यूटीफुल, खुद है लेपर चल ही नहीं सकता है, धकेल गाड़ी में बैठा हुआ लेकिन कामना के कितने पावर देखिए, फिर भी काम अभी भी इतना है, इस अवस्था में भी उनके संग पाने के लिए इच्छा की, अरे तू कैसे लायक, और पता लगाया सब बोले तो लख्य ही रहा है, $1 million पर नाइट रेट उनका है, वो तो कई स्वप्न में भी नहीं हो सकता, स्वयं लेपर चल ही नहीं सकता, पत्नी उसके सब कुछ उनका खिलाने पिलाने रखने संरक्षण करती है, वो भीख मांग करके दर दर भटक कर कुछ लाती है, और मन में कितने बड़ा आशा रखी, लेकिन आशा तो आशा ही, उस दिन अपने शाम को उनकी पत्नी आई आकर जो बना करके कुछ उन्हें खिलाने दी, नहीं खाऊंगा, हम नहीं हम नहीं खाएंगे। तो क्या हो गया? नहीं, जो भी सेवा स्वीकार करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, हूँ हाँ करके इसे करने लगा, पूरे उठ गए, क्या तकलीफ हुआ, क्या करूँ, पूछते पूछ सारा रात रो रो करके मनाने लगा, हो क्या गया बताओ तो सही, में क्या कर सकती हूँ, क्या करने सब खुश होंगे, खाना भी छोड़ दे, क्या हो गया क्या आपका, दवाई पानी जो भी मैं भी मांग कर ला कर करती हूँ और क्या कर सकती हूँ। बोला नहीं, इतने रो रो कर सारा रात रो रो करके पूछने लगी तो अंततः बोला कि मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म लगता है आपको बोलने के लिए, लेकिन खैर कोई है नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो बोलना भी फिर भी नहीं चाहता था, लेकिन वो बार बार कसम खाने लगी कि आप मुझे बताओ तो सही, कुछ भी हो आपकी इच्छा मैं सर्वस्व करके पूरा प्रयास करके पूरा करूंगी, आपकी इच्छा पूरा करूंगी करूंगी करूंगी, शपथ लेते खाने लगी तो लोग सही में कपड़ा कर देगी। मेरा मन में ये महापाप के विचार है, मैं बोलूंगी, अगर मैं बोलूंगा उसको ये क्या उसको पूरा करेगी, लेकिन वो नो ऑप्शन, और कोई उपाय भी नहीं है। तो अंततः अंतिम रात्रि प्रहर में तो उनको बोलने लगे बेशरम होकर के, बोला सच बताओ न बताओ, तो बोलने लगा आज ऐसे दोपहर में स्नान करने आई थी लक्ष्य हीरा जी और उनके साथ सुने, मैं इसको देख करके उनके प्रति मेरा काम भाव जागृत हुआ, इसी वजह से मेरे वही मन में चिंतन है, मुझे वो खाना पीना कुछ रुस्ता नहीं सुना रुस्ता नहीं। वो हाथ में सर्दी बोले भाई राम राम क्या हो गया। मैं होती होती आपकी इतने सेवा करती, इतने करते करते, लेकिन आप तुमने अब उनके प्रति आप कैसे, आपकी दशा, आपकी तो कोई मक्खी भणभण होते हैं आपके ऊपर, कुष्ठ व्याधि है, कोई दिखता भी नहीं उसको, गांव वाले बोलते हैं हटाओ उसको, अब लक्ष्य हीरा के साथ संग करने के लिए चाहते हैं कैसे ना। मेरे मन में तो हुई इच्छा है आप जो करो, आप तू बाध्य क्या बोलने के लिए, मैं तो बनना चाहता था बोल दिया, इसी वजह से मेरा मन में ये चल रहा है, इसी वजह से मेरे खाना पीना रोज। तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी बोला ठीक है, अगर आप यही इसी की तरफ प्रसन्न होंगे होना चाहते हैं तो मैं करती हूँ कुछ उपाय करती हूँ, कर पाऊंगी ना प्रयास करूंगी, ठाकुर जी है आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो क्या की उन्होंने, दिन में जाती थी जो भीख मांग कर ला के, इतनी प्रतिश्रुति दी उनको, खुश लगा शायद कुछ करेगा, तब खाना पीना शुरू किया, थोड़ा ठीक ठाक होने लगा। दिन में आपने पति की सेवा करके फिर भिक्षा करके जो काम करती थी, रात्रि 3 बजे उठ करके, 3 बजे प्रतिदिन उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ा, 3 बजे उठ करके एक झाड़ू ले करके जाती थी, जा करके जो चंद्र महल था लक्ष्य हीरा का जो भवन था, वो तो आधा किलोमीटर तक बगीचा था, बड़े विराट गेट फेल्ड सब था, नाइट सिक्योरिटी बहुत थे, लेकिन सब सो रहे थे, ऐसे ऐसे पड़े थे, चुप चुप रात 3 बजे झाड़ू लेकर उठकर जाती थी, पूरे चारों तरफ घर के चारों तरफ आंगन जो रास्ता सब झाड़ू करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सारे बगीचा में जो बिल्कुल साफ सुथरा करके सिंचाई बुहार करके सब रेडी करती थी। अब वो तो सब वैसे तो ऐसे 10 बजे उठती है, तो उनके जो नौकर वाकर वो भी 7-8 बजे उठते हैं, कोई उठने से पहले साफ नीट एंड क्लीन परफेक्ट करके आ जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था, सभी नौकर वाकर उठकर देखते थे सो क्लीन, कैसे हो गया किसी समझ में नहीं आ रहा था, कैसे हो रहा किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई किसी बोल नहीं रहे थे, पता नहीं कैसे हो रहा, किसी को और काम करना नहीं पड़ता था, जितने सारे झाड़ू लगाने वाले जो नौकरानी आती थी, सफाई करने वाले नौकरानी माली सब आते, सब खुश होते, बोले बढ़िया सब चकाचक काम हो जाता है, अब अपना ड्यूटी नहीं, सब जाते थे अपने घर, और सब लोग तो कामचोर होते ही हैं, कोई अगर दूसरा काम कर दे खुश हो जाएगा ना, हम तो महाल इसी से चल जाते थे, हाँ बोलते तो जरूरत नहीं पड़ेगा, फोन कर दे आज साफ हुआ ना, फिर क्यों जाऊँ, ऑलरेडी साफ हो जाए, मालकिन को रिपोर्ट कर दे सब ठीक ठाक है। लखेरा की दृष्टि पड़ा कि मेरे नौकर नौकरानी ये तो आलसी पहले से थे, मेरे पैसा के प्रभाव ये सब है, लेकिन आजकल वो भी इतने ढीले नहीं आ रहे, लेकिन काम तो इतने सफाई चकाचक तो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, इतने बढ़िया बढ़िया नौकर सकड़ो लगा नौकरानी, इतने बढ़िया बगीचा के बुहार आंगन मांगन सब साफ सुथरा चकाचक मैं भी कभी नहीं देखा था, ये कैसे हाउ इज इट हैपनिंग, कैसे हो रहा है। तो उनको भी आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि प्रतिदिन उन्हें नीचे आकर स्नान करने जाती थी, अब देखती थी बगीचा आंगन सब देखती थी, इतना क्लीन नहीं होता, लेकिन कुछ दिन से इतने क्लीन चकाचक, जैसे एवरी डे कोई झाड़ू करके पोछा भी लगाता है, एक धूल कणा भी नहीं रखने देता, तो उसको देख करके उनको भी आकर्षित होने, कोई भी आकर्षित होगा स्वच्छता को देख करके, नौकर वाकर तो थी ही लेकिन किसी को पता नहीं था कारण, तो उनको भी लगा, तो पूछने लगा आपने किए क्या, मैं बख्शिश देना चाहता हूँ मैम साहब, हम मैडम हमने तो कौन किया, सकड़ो उनके नौकर नौकरानी है, किसके भी पूछता है, बोलता है हमने किए। हमको भी आश्चर्य हो रहे, हम तो नहीं किए, कौन कर रहा है, हम तो करते थे ऐसा तो काम, हमने कभी किए ना, कर सकते हैं, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, किनको पड़ी है। लेकिन उनका मन में बड़ा उत्साह होने लगे, खैर कर रहा है कौन, एवरीडे इट्स हैपनिंग। तो उनने उनको उत्साह हुआ, सब कोई सिक्योरिटी को बता लेकिन सिक्योरिटी लोग पैसा लेके तो सब ऐसे ढोल से पता नहीं कर पाए। एक दिन स्वयं लखेरा बोला नहीं पता कर पाए, महीना दिन हो गया नहीं कर पता रहे, कौन करता है। तो एक दिन स्वयं नाइट ड्यूटी दूंगा तो उस दिन अध्यक्ष करके रहा, बोला मैं पता लगाना चाहती हूँ आखिर कर रहा है कौन। एक महीना तक कंटिन्यूस 3 to 16 घंटा काम डेली करती थी बिल्कुल ईमानदारी से। तो एक दिन उन्होंने अपने चंद्रमहल के ऊपर से देखी, एक ऐसी दुबली पतली नौकरानी तरह एक बार फटी फूटी कपड़ा पहनी हुई एक औरत आती है, झाड़ू दे करके बकेट से लेकर के पोछा करती है, साफ साफ तरह बागन करके डर डर करके चोर की तरह चोरने की तरह डरती डरती साफ सुफा करके फिर चली जाती है, चली जाती के समय देख रही थी कितने ध्यान से कितने बढ़िया से कर रहा है सेवा, ऊपर से देखती थी उन्होंने पूरा देखती थी। जब चलने लगी चुपचाप सब सिक्योरिटी से हुए बुलाया उनको, वो डर गई क्या होगा, मालकिन नजर पड़ गया कैसे देख लिया क्या करूं, तो रोक लिया पहले तो उनको रोको उनको बुला के ला, तो उनको पकड़ कर ले गए उनके पास, पकड़ कर ले गए, बोले आप कौन हो। वो तो थर थर काम कर रोने लगी, क्या करूं माफ कर दीजिए, गलती मेरा है, मैं बिना परमिशन में अपराध की, आपने अपराध तो खैर की नहीं थी, तू इतने बढ़िया काम की, लेकिन फिर भी और नहीं गिड़गिड़ाने रोने लगी। तो उनको लखेराने पूछने लगी बताओ आप, मैं मेरा पास सकड़ो सकड़ो नौकर नौकरानी है, अभी तक कितने पैसा मैं रोबाद खर्चा करता हूँ करती हूँ, कोई भी इस प्रकार सेवा अभी तक नहीं किए, मैं कभी आशा भी नहीं कर सकता थे, लेकिन आप बिना पेमेंट में मुझे परिचय भी देना नहीं देते हैं, पेमेंट भी नहीं लेते हैं, छिप छिप करके मेरे लिए इतने काम इतने दिन से क्यों कर रहे हैं, क्या रहस्य है। हमें वो आश्चर्य होने लगी, बहुत बाध्य करने लगे, नहीं नहीं नहीं, तब फिर बोलाने लगे अब क्या बताऊँ, आप मैडम बाध्य करते हैं, बताओ ना बताओ, प्लीज़ बताओ ना, प्राइवेटली बताऊँ, प्राइवेटली बताने लगी, सारे स्टोरी बताई ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसा है, कहाँ तेरे पति रहते ना, मेरे पति वो घाट के पास जो पेड़ है ना, वो पेड़ के नीचे तो व्हील चेयर में बैठे खेला गाड़ी पर, वो कुष्ठ व्याधि कुष्ठ, उनका हृदय पिघल गया, उस लक्ष्य हीरा वेश्या का उनके सेवा के प्रभाव से उनके सतीत्व का प्रताप से उनके हृदय पिघल करके पानी हो गया उनके सामने। वो बोला आज सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल, उनके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स, लेकर जाओ, साइन करके दिया, टुडे हिज अपॉइंटमेंट, लेकर जाओ मेरे तरफ से, आई एम स्पॉन्सर, मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो खुश हो गई, आ करके बताए अपने पति को, पति तो कूद पड़ा व्हील चेयर से, कूद पड़ा नीचे इतने कूद, क्योंकि कभी सपने में सोचा नहीं सकता था इसे। लेकिन तो फिर बोला कि आप रात को लेकर आना उन्हें पहुंचा। तो जब से उन्होंने सुना ओ तो इतने उल्लसित हुआ पति ने कि सही में लक्ष्य हीरा जैसे राजीव ना, देखो अपॉइंटमेंट साइन ही उनका आज का टिकट। तो उनको नहा धुला करके वो तो खाना पीना छोड़ इतने खुश हो गया। तो रात में लाइट में उनको वो अपने पत्नी स्वयं ठेला गाड़ी में बैठा कर धकेल धकेल कर लपुसी पति को लेकर गया, लेकर उनको गोद में उठा करके चंद्रमहल ऊपर महला में लेकर गया, थर्ड फ्लोर उठा करके, खुद नहीं जा सकते, उठा करके वहाँ बैठा। पूरी महल जो उनका था एक से एक सोने और चांदी मणि माणिक के चेयर टेबल पड़ा हुआ था, उसके अंदर जैसे उन्होंने बैठा दिया चंद्रमहल में, उनका पसीना तो उतर गया, बापरे बाप ये स्वर्गीय वातावरण है, इतने ऐश्वर्यपूर्ण है, कैसा वातावरण है, कभी तो देखा नहीं था उन्हें। लेपरेसी है बेचारे, जीवन भर पेड़ के नीचे मच्छरदानी भी नहीं था, मच्छर के सारे ऐसी बिता, इतने भव्यपूर्ण ऐसे व्यवहार देख करके वो उनके पत्नी उनको छोड़ करके चली आई उनको बैठा करके। अब लख्य हीरा आई इस भवन में, लख्य हीरा को देख करते और पसीना उतर गया उनके, बाप रे बाप, मुखी से आगे बोलना, मुख में खनी शब्द निकल नहीं पाया, गदगद हो गया उनका, ये बुरी हाल हो गया। तो पास में आकर बोले, क्या बोला, गला मेरा सूख जा रहा है, थोड़ा मुझे पानी पानी पिलाइए, फिर कृपा करके पानी पिलाइए, बाद में बात कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला, ए पानी लाओ। तो पहले से व्यवस्था था, 3 जल पात्र पानी लेकर आए, एक सोने की कप में, एक चांदी के कप में, एक मिट्टी के कुल्हड़ में, एक मिट्टी के घड़ा से मिट्टी के कुल्हड़ में पानी, स्वर्ण पात्र से पानी, रौप्य पात्र से पानी, 3 प्रकार से 3 पानी लेकर उनके सामने रख दिए। बोले पियो। तो प्यास में गला रुक रहा था, पसीना उतर रहा था, पानी अब शांति होना चाहता था। बोले पियो न, 3 न, कोई आपको जो पसंद है ले जाओ पीना। तो इधर उधर पसंद करके मिट्टी वाला जो कप था उसी पानी लेकर पीने लगा। जैसे पीने लगा तृप्त, उसमें तृप्त होने लगा। बोला क्यों इसको पिया आपने, ये भी पानी था, ये भी पानी था ना। नहीं, अगर प्यास की अवस्था में सचमुच कोई तृप्ति शांति चाहता है तब ये सोने चांदी के नहीं हो सकता, केवल मिट्टी के बल पात्र, मिट्टी के घड़ा का पानी ही सचमुच प्यास बुझाएगा, तृप्ति शांति देगा। इसलिए बोले बस मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं तो सोने चांदी वाले हूँ, आपकी पत्नी है वही शीतल जल मिट्टी घड़ा के, उनको छोड़कर मेरे पास क्यों आना चाहते हैं आप। यही तो था, इतने बड़े सती नारी, इतने गुणवान है, क्या देखते थे रूप के अंदर है क्या चीज। जब इस प्रकार लक्ष्मी रानी बोलने लगी, वहीं पर रो पड़ी, बोला ठीक मेरा हो गया, आज गाना मुझे विदा कर दिया। तो उनकी पत्नी को बोला लेकर गया, उसी दिन से इतने उनके अंदर ग्लानी हुआ, बिल्कुल डायनामिक चेंज हो गया उनके अंदर, इतना ग्लानी हुआ, बोला मैं कितनी गलती किया हूँ। तो उसको लेकर आया, बारम्बार रो रो करके माफ़ी मांगा उनकी पत्नी के पास। पत्नी बोला नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, समझ गया, आज मेरा आँख खोल दिया लखेरा ने, सही में तृप्ति तो जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए था, अशुद्ध में नहीं। तो लेकर आया खुश होकर के, पत्नी भी खुश हो गया, चलो पति के परिवर्तन हुआ है। लेकर आए और ला करके रास्ते में बोला, मैं अब इतने दिन से सोया नहीं था, कल रात भी सोया नहीं था, थोड़ा मुझे नींद दे, सही सुला दीजिए। तो रास्ता के नीचे एक पेड़ के पास में मिड नाइट हो गया था, वहीं सो गए, उनको पति को सुला दिया, वो भी सो पड़ी बाद में। तो उनको पता नहीं था, लेट नाइट सोए थे 12-1 बजे, थोड़ा लेट उठने लगे और उस दिन से कई दिन टायर्ड थे। तो एक ऋषि स्नान करके सुबह सुबह नदी से आ रहे थे और अंधार था, उनको पता नहीं था, और रास्ता में सोया था, उनको पैर में लगा, पैर में लगा तो ऋषि गुस्सा हो गए, देखा अरे भिकारी लेप्रोसी बड़ी अपवित्र हो गया, पानी खराब हो गया, गुस्से में चिल्लाने लगा। वो तो उठे, लेप्रोसी नींद खुला, लेकिन क्या बोल सकता, उनकी पत्नी उठ करके हाथ जोड़ करके माफ़ कर दीजिए, गलती मेरा है, मैं ही सुला दिया, रात दिखाने था, मिड नाइट में आ रहे थे, तू क्या होगा ये से खूब मिलाने लगा, मैं तो अभिशाप दूंगा उसको, अब दे ही दिया अभिशाप, सूर्य उदय होते ही तेरा पति मृत हो जा, मर जा। ओ रो रो करके पैर पड़ पड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, सर्वस्व देकर मैं उनको बचाऊंगी, इतनी क्या हो, प्लीज कृपा करिए, कुछ भी कीजिए ना। तो फिर ऋषि ने बोला ना मैं नहीं करूँगा। तो जैसी बात देखा तो उन्होंने फिर बहुत करने के बाद बोला ठीक है, आप अपना काम पे, मैं भी अपना काम करना, क्या करूँगी तुम्हें ना, अगर मैं जब से उनके हाथ पकड़ कर आई हूँ अभी तक अगर मन में वचन में स्वप्न में भी कोई पुरुष पुरुष का चिंतन में नहीं किया हूँ, इस प्रकार के मेरे भावना मेरे पति के प्रति है, तो इस सतीत्व के बल पर मैं ये कहती हूँ कि आज सूर्य उदय होगा ही नहीं, सूर्य उदय आज से नहीं होगा, क्योंकि सूर्य उदय होने से मेरे पति मर जाएंगे, तो सूर्य उदय ही ना हो। बोला ऐसे थोड़ी होता, ठीक है आप भी जाइए, आपके बल देखिए और मेरे बल भी देखिए। चले गए, सुबह होते होते सुबह हुआ ही नहीं, 5 बजे से 5:30 आगे घड़ी बढ़ता ही नहीं, घड़ी बढ़ता ही नहीं। सो करके उठे, सुबह ही नहीं हो रहा है, क्या करें, सुबह उठने स्नान करेंगे, बाथरूम तो लग रहा है, बाथरूम गए आए, भूख लगा फिर खाए, लेकिन सुबह हो नहीं रहा, सुबह हो ही नहीं रहा है। 7 दिन तक सूर्य उदय नहीं हुआ, हाहाकार मच गया, देवता लोग थर थर कांपने लगे, सूर्य की गति रुक गया, सब ठप हो जाएगा सूर्य के बिना, सारे देवता होकार मच गया, दौड़े ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा विष्णु के पास गए, सी ब्रह्मा विष्णु पूछे क्या हो, विष्णु बोले एक कोई गड़बड़ी है, एक सती स्त्री ने इसे रोक दिया है, सूर्य की गाड़ी अखचक्का बंद, स्ट्राइक उनकी गाड़ी बंद। और क्या करना है ना, आप सब जाओ, बदमाशी कर रहा था आपके ऋषि लोग, ये सब टेम्पर हाई टेम्पर है, जाकर समझाओ क्या करें ना, तो बोल दिया ना, बोले दोनों काम करना है तो जाकर बोले तो क्या करें ना, उनको समझाना पड़ेगा, वो रिलीज करेगा। सुनिए तो बोले मैं तो तैयार हूँ, मेरी गाड़ी जाऊँगा, चाबी लक लक करके रखा रास्ता। उनके पास गई तो उनको कौन बोलेंगे ये सती को, तब अनुसुईया जी के पास आना पड़ा सबको। अनुसुईया जी को प्रार्थना करने लगे सारे देवताएं, बोले आप ही के स्टूडेंट है, आप उनको सतीत्व की शिक्षा ट्रेनिंग दिए थे, आप जाकर बताइए आपके स्टूडेंट को, थोड़ा रिलीज कर दे शाम को, सूर्य गति शरीर की गति को छोड़ दे। तो बोले ठीक है मैं जाऊंगी, मैं बोलने से छोड़ देगी, लेकिन मेरा भी शर्त मानना। क्या सर? ना जब सूर्य उदय होगा तो उनके पति मर जाएंगे, आप सूर्य उदय होने से पहले सारी देवता मेरे साथ चलिए, उनको सब वरदान दीजिए कि जैसे उनका पति मर जाएगा आप उनको दोबारा जिला देंगे, उनको सारे रूप गुण ऐश्वर्य सब दे देंगे, वो सब कुछ ना। ओके आई डोंट शाइन। सारे देवताएं गए, सारे देवता तीन त्रिदेव मुख्यतः गए, तुष्ट कल तीन देवा ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सारे देवता गए। सारे देवता जाकर फास्ट अग्रीमेंट, फास्ट हेड साइन किया गया अग्रीमेंट एडवांस कि अगर सूर्य उदय हुआ, रिलीज कर दो सूर्य को, सूर्य अगर उदय होंगे जब पति मर जाएगा भड़क सा हम उनको इमीडिएट रिलाइफ कर देंगे, जीवनदान कर देंगे। जीवनदान बोले मैं ये दिला दूंगा, मैं ये दिला दूंगा, रूप दे दूंगा, गुण दे दूंगा, सूर्य दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया भर के वरदान उनको दे दिए एडवांस। तब फिर वरदान से उनको कोई नहीं पड़ी थी, उनके गुरु अनुसुईया जी उनको बोले मदाला सा, तो उन्हें छोड़ दी गुरु जी की बात पर, आपने प्रतिश्रुति वापस ले ली। तो सूर्य उदय होने लगे, सूर्य उदय हुए तो धड़ से उनके पति लेप्रसी पति गिर के मर गया। तो तुरंत सारे देवताओं के कहने हिसाब से तुरंत दिव्य शरीर लेकर के प्रकट हुआ, दिव्य शरीर लेकर के। अब तो दिव्य शरीर, दिव्य भाव, दिव्य ऐश्वर्य में आया, तो अब ये जो भिकारी निकल घूम रही थी तो उनका भाग्य खुला। इस प्रकार से इसी कहानी को चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि मैं इस प्रकार भाव मेरा होना चाहिए जैसे एक कुष्ठपति रमणी एक कुष्ठ व्याधि के ग्रस्त के पति के पत्नी एक वेश्या के सेवा करके तीन देवताओं को प्रसन्न कर लिया, तो इतने बड़े अचीवमेंट वाले प्रश्न, सूर्य की गति को स्तंभित कर दिया, ये पति बता के प्रश्न। तो ये सब सती अनुसुईया के स्टूडेंट थी, सतीत्व की शिक्षा के जो आचार्य है अनुसुईया जी। सीता देवी अनेक अनेक सतियों को शिक्षा दी थी, सती की शिक्षा दी, और ये सब पावर अनुसुईया जी, तो इसलिए वन में रह के पति बता। तो इसलिए इस जगह के आकर के हम लोग कम से कम ये शिक्षा लेना चाहिए, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, केवल पति परायण होकर के नियम से वचन से मन से प्राण से कोई अगर इस प्रकार सेवा करे सच्चाई से तो इतने बड़े शक्ति संपन्न होगा, सूर्य की गति स्तंभन हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बरवश कर सकते हैं, प्राभव कर सकते हैं। ये स्थली है, ये त्रिदेव पराजय स्थली है, अनुसुईया देव का स्थली। उससे आगे हम लोग आप लोग गए थे स्फटिक शिला ना, नहीं हाँ, फिर आप लेट में गए होंगे। एक वही मंदाकिनी नदी के बीच में एक पत्थर, पत्थर के कलर कुछ अलग प्रकार के, अब कहीं ऐसे कलर के पत्थर नहीं देखेंगे, इतने बड़ा पत्थर उसका अद्भुत कलर है ना, नहीं बिल्कुल चिकन है। स्फटिक जानते हैं किसी, स्फटिक शंकर भगवान पहनते, बिल्कुल कांच की तरह दिखता है, डायमंड की तरह स्फटिक माला, ट्रांसपेरेंट होता है, शंकर जी पहनते शुद्ध स्फटिक संपन्नम। हाँ बेचते हैं हम लोग, सब बेचते थे पैराफर्निया स्टॉल में, बड़े डुप्लीकेट होगा क्या पता नहीं, जो भी हो स्फटिक पर्वत महाराष्ट्र में है, और पर्वत में शिला को फाइन करके स्फटिक बनाया जाता है, एक खनिज पदार्थ है, एक प्रकार का मणि है। तो इस प्रकार बोलते हैं कि ये अभी तो पत्थर है, बोलते हैं कि स्फटिक पहले से था, त्रेता युग में पता नहीं, अभी पानी के चलते चलते शायद पत्थर हो गया, स्फटिक भी पत्थर ही तो है। जो भी स्फटिक शिला खंड विशाल खंड था, और इस एरिया में भगवान सीताराम कितने रमण किए हैं, तो एक बार भगवान राम स्वयं अपने हाथ में नदी के किनारे पुष्प चयन को सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प चयन करके उनको माला बना करके सीता जी दोनों तरफ नदी के धारा बह रही थी, इस सुंदर स्फटिक शिला पर सीता जी बैठी थी, भगवान राम जाकर उनके बेणी गुंथन कर रहे थे, उनके बेणी को श्रृंगार कर रहे थे, गुंथन कर रहे थे पुष्प माला लगा करके। तो इसी समय में इंद्रपुत्र जयंत सीता जी के सौंदर्य से मुग्ध होकर के आई, आकर के चंचू में उनको करना चाहती थी आघात, लेकिन भगवान राम ही पीछे बैठे थे, तो कुछ नहीं कि कम से कम चरण में चंचू मारी सीता जी के चरण में, चंच मारी तो सीता जी के चरण तो इतने मुलायम थी, इतने नरम थी, कहा कि कंच लगते ही तुरंत रक्त धारा बहने लगा। सीता जी चिल्लाने लगी तो भगवान राम ने धनुष बाण किया, एक घास के तिनका उठाकर फेंक दिए। भगवान के हाथ से एक घास के तिनका चला तो ब्रह्मास्त्र भी और पावरफुल होकर के चला। वो कौवा के पीछे चला, कौवा के कोई साधारण नहीं था, इंद्र देवराज के राजा के बेटा था, राजकुमार था, इंद्र का बेटा था, देवराज पुत्र का था। वो तीन लोक तक दौड़ा लेकिन उसके पीछे घास के तिनका नहीं छोड़ा, तीन लोक तक पीछे दौड़ कर गया, अंत फिर वापस आया तो आकर बोले क्या करूँ। नारद जी बोले कि अग्निमंत्री से कर दो ना क्या, बोले बोलो एक आँख कम से कम फोड़ दे बाकी वो भी शांत हो जाए। तो एक आँख फोड़े क्योंकि बिना कुछ किए तो आएंगे नहीं बाण, तो एक आँख फोड़ा तो आज तक काक एक आँख ही है, सारे कौवा की कौवा जाति की आँख फोड़ दिया उन्होंने, केवल आँख आँख नहीं अपना नहीं फोड़ा, काना बन गए सारे। तो इस प्रकार ने ये लीला वहीं पर हुई थी। ये लीला को जब भगवती सीता अशोक वाटिका में थी तब भगवान के वाहन बन करके हनुमान जी ने जाते हैं, सुंदरकांड में कथा आती है, जब जाते हैं हनुमान जी ने जाकर ढूंढ ढूंढ करके सीता अन्वेषण करके अशोक वन में पहुंचते हैं और वहां सबसे पहले रावण आदि इसको देख करने के बाद सीता जी के साथ जो इंट्रोडक्शन होता है हनुमान जी का इंट्रोड्यूस होता है तब वो बोलते हैं सब पहचान लिए, बहुत खुश हुए सीता जी। लेकिन फिर हनुमान जी वापस जाते हैं, बोले माता जी मैं अगर जाऊँगा भगवान राम कैसे विश्वास करेंगे कि मैं सीता जी से मिला था करके, व्हाट इज द प्रूफ। अगर मुझे पूछेंगे आप सचमुच इतने बड़े बड़े बात करते सीता जी से मिला करके, व्हाट इज द प्रूफ, मैं क्या बताऊँ। सोचने के बाद कहा था ना कौन विश्वास कर लेगा, भगवान राम बोले मैं कैसे विश्वास करूँ, रावण राज्य में एक से एक सुंदरी सब बैठे हो, किसी को बोलकर मिलकर आया होगा सीता जी को मिला करके, क्या सीता जी तो फोटो तो देखा नहीं आपने, आप कहने बिलीव तो सीता जी मिला के, सीता जी तो पहले तो देखी नहीं आपने, आप पहले से परिचित होता तब मैं मानता कि हाँ मैंने देखा अपने भाभी जी से मिलकर आया, तो पहले तो देखा नहीं, तो न्यू ड्यूटी है तू तू कैसे मैं कैसे विश्वास करूँ सीता जी से मिला करके। जब अर्जुन हनुमान जी ने बात प्रश्न उठाए तब सीता जी ने बोले हम बात तो सही किए। तब सीता जी ने बोली एक कहानी, ये कहानी कोई नहीं जानता है केवल मेरे प्रभु जानते, मैं जानता हूँ ये कथा, अगर तू बताएगा तब भगवान मान जाएंगे, ये तो निश्चित रूप से सीता जी का, नहीं तो ये कथा तो और किसी को पता ही नहीं। ये घटना ये चित्रकूट में मंदाकिनी स्फटिक शिला पर लीला हुआ था, कोई नहीं जानते, मैं एकांत में आप बैठे थे, केवल इंद्र पुत्र आया था इस पर घटना हुआ था, ये लीला कहना। तो हनुमान जी को सीता जी ने स्वयं ये कथा सुनाई, तब जो वो कथा हनुमान जी आकर राम के आदर राम बोले तो निश्चित ये और कोई नहीं जानती, ओनली टू आप हम दोनों ही थे, तो जी बताए ना तो मतलब तो सीधा ऐसे मिल गया विश्वास, विश्वास दिलाने के लिए। तो इस लीला के घटना इधर है। तो इस प्रकार ये चित्रकूट में अनेक लीला संपन्न है, जैसे आप अभी रामघाट जाएंगे, रामघाट में प्रसिद्ध राम भक्त तुलसीदास जी का आश्रम है, वहीं पर उन्होंने राम भक्त राम उपासना किए थे, प्रसिद्ध है ना पद क्या तुलसी चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, हाँ चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, वही घाट राम घाट है, हाँ चंदन चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, रघुवीर ने तिलक किए थे आकर के चंदन घिसते थे और पता नहीं चलता था, भक्तों की सेवा लेने के लिए भगवान संत मन करके आते थे, आके तिलक करके चले जाते थे, पता नहीं चलता था कि भगवान है। तो आज भी क्या पता कभी कोई किसके बीच में भगवान राम आकर चले भी गए, आप कैसे पहचानेंगे, जब तुलसीदास पहचान नहीं पा रहे थे हम तो गाय के गोबर है क्या पहचाने है ना नहीं। तो इस प्रकार अवश्य नित्य निवास करते हैं इसी विहार स्थली भगवान सीताराम के, किस रूप में किस भेष में अब भी होते होंगे दिव्यता में, है ना नहीं। तो राम के घाट है वहाँ इस पूरा संगम में, आजकल तो पानी रहा ही नहीं, बोल तो पयस्विनी मंदाकिनी के संगम धारा, जहाँ राम संगम कहते राघव संगम राघव प्रयाग, तो बोलते हैं कि ये प्रयाग से भी और प्रभावशाली प्रयाग हैं। जब दशरथ महाराज के निधन की बात सुने भगवान राम ने तो सबसे पहले यहाँ दशरथ जी के लिए उन्होंने पिंडदान किए थे, राघव प्रयाग कहते हैं। आजकल धारा सब सूख गया है कुछ है नहीं, लेकिन ये रामघाट स्थान है, पानी है, यहाँ लोग आते हैं, बहुत सारा पुराना आश्रम है ऋषि मुनियों का, मत गयंत शिव जी का मंदिर है, भगवान राम जब आए थे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में पूजा किए थे और वहाँ साधु संत के आश्रम है, वो स्नान करते हैं, राम मंदाकिनी की आरती होता है रामघाट में, अब दर्शन करेंगे आ जाएंगे। और कल सुबह अयोध्या गमन है, तो इसलिए ऐसे कर्तृपक्ष ने विचार किए हैं कि आप लोग आकर के यहाँ सो जाएंगे जल्दी, थोड़ा बहुत यात्रा में तो कठिनाई होना आवश्यक है, अगर यात्रा करे थोड़ा तकलीफ नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ा परेशानी नहीं हुआ, तब फिर यात्रा क्या है। तो ये सब एसेंशियल ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत तकलीफ तो कल सुबह सुबह एकत्रित हो जाना 5 बजे यथा समय में, क्योंकि आज तो लेट नहीं सोएंगे, जल्दी सो करके और 5-5:30 बजे से मॉर्निंग प्रोग्राम करके 7 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट यहीं सर्व कर दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट खिचड़ी प्रसाद पा करके गर्मा गर्म आपने गाड़ी में बैठ जाना सब, और लंबा लगभग 6 घंटा का रास्ता है तो अयोध्या 12-1 बजे पहुँच करके नाश्ता लेंगे, है ना। और रास्ता में छुटर मुटर खाने के लिए सबका वास्ता होता है, अपना अपना सब लेकर चलना होता है, दिखा कर चलना। बाल भोग जिसे मैं कहता था खिचड़ी, इसलिए क्योंकि भारतवर्ष का साधु संत का प्राचीन परंपरा आज भी चलता, कोई मठ मंदिर में जाएंगे बाल भोग धूप खिचड़ी धूप, यही नियम है। तो हम उन प्रभु के भक्त होकर हम खिचड़ी नहीं खाएंगे बाल भोग में, तो ठीक है हमारा भक्त जीवन था, तो हम ही बाल भोग में खिचड़ी खाना चाहिए, है ना। नहीं हरे कृष्ण।